श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे तुम बिनु के दयालु जगत संसारे श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु पतित पावन हेतु तब अवतार मोसम पतित प्रभु न पाई विहार पति आहा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी कृपा बलो कर आमी बरुखी दया कर सीतापति अद्वैत गोसाई तब कृपा बोले पाई चैतन्य निताई कर श्रिया आहा स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ दया कर श्रीयाचार्य प्रभु श्रीनिवास रामचंद्र संग मागे नरोत्तम दास हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। श्री श्री चैतन्य महाप्रभु की, श्री श्री नित्यानंद प्रभु की, समवेत भक्त वृंद की, निताय गौर हरि प्रेमानंदी। ओम नमो भगवते गौरचंद्राय, ओम नमो भगवते गौरचंद्राय, ओम नमो भगवते गौरचंद्राय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। आज आपके क्रम के अनुसार श्री चैतन्य चरितामृत से पाठ आदि लीला द्वितीय अध्याय श्लोक संख्या 38 है ना,
38 से लेकर 42 श्लोक।
ओके। नार शब्दे कहे सर्व जीवेर निचय, पढ़ने में दिक्कत होता है क्या? 42 लिखा है क्या? ओके, उसको पहले पाठ कर लेते हैं, पढ़ते हैं। नार शब्दे कहे सर्व जीवेर निचय, अयन शब्दे ते कहे ताहर आश्रय, अतएव तुमी हयो मूल नारायण, यही एक हेतु सुना द्वितीय कारण, जीवेर ईश्वर पुरुषादि अवतार, तेह सवा हैते तुमार ऐश्वर्य अपार, अतएव अधीश्वर तुमी सर्व पिता, तुमार शक्ति ते तारा जगत रखिता, नारेर आयन जाते करह पालन, नारीर अयन जाते करह पालन, अतएव हय तुमी मूल नारायण, नारीर अयन जाते करह पालन, अतएव हय तुमी मूल नारायण, नारेर अयन जाते करह पालन, अतएव हय तुमी मूल नारायण। कोई पाठ करेंगे? कोई माताएं पाठ करेंगे? श्रीमद् भागवत के श्लोक संस्कृत भाषा में है, उसको पाठ करने में हमको दिक्कत होता है, और उससे बढ़कर के ये ग्रंथ श्री चैतन्य चरितामृत जिसके प्यार तो बंग भाषा में है लेकिन हिंदी लिपि में है, बड़े सरल भी है, और उसको पाठ करने से भागवत श्लोक से कहीं अधिक फल प्राप्त होगा, तो उसको भी आप पाठ नहीं करेंगे तो फिर कैसे चलेगा, है ना? नहीं तो जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त बिंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त बिंद श्री चैतन्य महाप्रभु का ये चरितामृत का दूसरे अध्याय में वस्तु निर्देश बताया गया है। मैं जैसे बताया था लेखक कविराज गोस्वामी ग्रंथारंभ में मंगलाचरण करते हैं। मंगलाचरण तीन प्रकार का होता है, त्रिविध प्रकार। सबसे प्रथम होता है नमस्कार, उसके बाद होता है वस्तु निर्देश, उसके बाद होता है आशीर्वाद। नमस्कार में शुरुआत होता है, सर्वप्रथम नमस्कार किया जाता है गुरुवर्यों को, गुरु वर्ग को, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु आदि गुरु वर्ग से लेकर के आचार्य वर्ग से लेकर के भगवान तक, वंदे गुरु निशन से शुरू करके ईशान ईशा भक्तान ये सभी तत्व को प्रणाम करके नमस्कार करके प्रथम अध्याय केवल प्रणाम में गया, नमस्कार में गया, कैसे कैसे अलग अलग तत्व प्रणाम किए। तो दूसरे अध्याय मंगलाचरण के जो दूसरे फेज है वस्तु निर्देश, ये जो ग्रंथ है इतने विशाल श्री चैतन्य के चरित्र रूपी अमृत, उसमें क्या विषय वस्तु है इसी को बताने के लिए ये द्वितीय अध्याय में वर्णन करते हैं कि इसमें क्या विषय है और कुछ नहीं है, अद्वैत तत्व साक्षात परम पुरुष परमात्मा भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का ही लीला के वर्णन है। श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है? बंगाल में कुछ लोगों को छोड़ करके बाकी भारत के बाकी जगह में तो बोलते हैं क्या वो एक पंथ है अपना, उनको भगवान मान लेते हैं, है ना? नहीं, यहां तक कि हिंदी भाषा में जब प्रभुपाद जी के हमारे चैतन्य सिद्धांत प्रकाशन से पहले आप जो भी चैतन्य महाप्रभु के पढ़े होंगे, चैतन्य चरित शायद किताब के नाम गीता प्रेस से हिंदी से निकला हुआ है जो प्रभुदत्त ब्रह्मचारी के द्वारा लिखित है, कई लोग शायद महाप्रभु के भक्त उनको पढ़े होंगे। इसमें शुरुआत में श्री ब्रह्मचारी महाशय ने लिखे हैं, हाँ चैतन्य महाप्रभु को उनके संप्रदाय के लोग ईश्वर करके भगवान करके मानते हैं, लेकिन मैं कैसे मान सकता हूँ? बिल्कुल क्लियर सबसे प्रथम पन्ने में लिखे हैं, मैं कैसे मान सकता हूँ, मैं तो नहीं मान सकता। उनके पार्टी के लोग उनको भले माने, लेकिन मैं तो ही मानता हूँ कि भक्त थे वो, अच्छे कट उच्च कोटि के भक्त थे। मैं जिस दिन से इसको पढ़ा तो उस दिन से किताब बंद करके रख दिया, मतलब चलो उसको नहीं पढ़ना है। इसी को ये द्वितीय अध्याय में कहते हैं कविराज गोस्वामी, जिन्होंने श्री चैतन्य को भगवान करके नहीं जाना, यही तो विषय वस्तु है इस ग्रंथ का। तो मूर्ख समझेगा क्या, जानेंगे क्या, आगे नहीं बढ़ पाएगा, सभी से यही गड़बड़ होगा कि भगवान को हमारे मूर्ता, क्योंकि भगवान गीता में कहते हैं नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृत, मैं सबके पास प्रकाशित नहीं होता हूं, पर्दा के अंदर रहता हूं। कौन सा पर्दा? ना योगमाया रूपी पर्दा, योगमाया समावृत, योगमाया रूपी पर्दा के द्वारा सम्यक रूप से आवृत हूं, ढांका हुआ हूं, मुझे दूसरा कौन देखेंगे? कोई नहीं देख पाएगा। एक तो भगवान अपना को ढांक कर बैठे हैं, और हम लोग अपना को ढांक कर बैठे हैं। हम महामाया समावृत, हम अपने सामने एक महामाया रूपी कटन डाल रखे हैं, हम भी देख नहीं पाएंगे। अगर महामाया के कटन हटाएंगे तो अपने अब वो भी स्क्रीन डालकर बैठे हैं, उनको भी नहीं देख सकते, पट बंद है, तो कैसे देखेंगे? दोनों तरफ से दो पर्दा अगर ना खुले, दर्शन सुमोने जान नहीं सकते। मूढ़ो यंग नाभि जानाति मानुषी तनुमाश्रितम, भगवान जब परम चरम लीला प्रदर्शन करने के लिए कभी कभी नर रूप में आते, मनुष्य रूप धारण करते हैं, तो जो मूढ़ है, मूढ़ शब्द मैं नहीं कहता हूं, भगवान कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, मूढ़ो अयम, ये मूढ़ है, मूढ़ मतलब मूरख, मूरख लोग मुझे मनुष्य करके मानते हैं, अरे हमारे जैसा तो ये है और क्या, ऐसे मानते हैं। तो इसी बुद्धि करेंगे, ज्यादा सा तो बोलेंगे हाँ पढ़ा लिखा है, भक्त है, अच्छा भक्ति बाबा, यही कहेंगे और क्या। ऐतिहासिक मनुष्य बड़े शक्तिशाली बड़े पावरफुल इसे मानेंगे, लेकिन नहीं, भगवान की तुलना किसी के साथ नहीं किया जा सकता, असमर्थ है। तो यही बात को, इसी तथ्य को ठीक से प्रकाश करने के लिए श्री गोस्वामी पाद ने इस चैतन्य चरितामृत का द्वितीय अध्याय लिखे, एक अध्याय इसके ऊपर किए हैं, केवल इस वस्तु को निर्देश करने के लिए। यही वस्तु है, वास्तव वस्तु, उन्हीं को छोड़ करके समग्र ब्रह्मांड में सब अवास्तव है, सब अवास्तव है, शैडो है, छाया है, सब काया तो केवल वही है, बाकी सब छाया। अगर काया ना रहे छाया सृष्टि हो सकता? हां, मूर्ख छाया के पीछे पड़े, जानते नहीं कि काया से छाया निकला हुआ करके, नहीं जानते। तो इसी बात को समझाने के लिए चैतन्य के भगवत तत्व भगवत्ता को प्रमाणित करते हुए कविराज गोस्वामी अनेक अनेक श्रुति से, शास्त्र से, पुराण से विभिन्न उदाहरण देते हुए प्रमाणित करते हैं ये वस्तु को, कि चैतन्य महाप्रभु ही स्वयं मूल भगवान है और कोई नहीं है। इसको प्रमाण करते हुए उदाहरण देते हैं, इस सृष्टि के प्रथम जीव ब्रह्मा, जिसके चार मुख है, चतुर्मुख वेद ज्ञाता, चार वेद के चार मुख से वक्तव्य करने वाले चतुर्मुख ब्रह्मा स्वयंभू, वो कोई उनका मातृजोनी से प्रकट नहीं हुए ब्रह्मा जी, स्वयंभू है, पद्मजोनी, भगवान के डायरेक्ट डिसाइपल, और उनका भगवान से सीखे भी, उनके स्टूडेंट भी, डायरेक्ट छात्र उनके भी है। उन्होंने उनका वक्तव्य को देते हैं गोस्वामी पाद ने, बोलते हैं ब्रह्मा जी ने एक बार घटना ऐसी हुआ था, समय तो बहुत जल्दी चल रहा है ना, आप और एक टॉपिक बोल रहे हैं ना, तो शॉर्टकट में करना होगा। तो ब्रह्मा जी ने जब वृंदावन में भगवान को परीक्षा करने के लिए उनके शिशु अवस्था में, बालक अवस्था में उनके बछड़ा को चुरा लिए, उसके बाद उनके संगी बालकों को भी चुरा लिए, तो उस समय में उनका जो मोह हुआ था, इस मोह को जान करके, अरे मैं फंस गया, मेरा बुद्धि काम नहीं कर रहा, ये जब उनको समझ में आया तब क्षमा याचना की। क्षमा याचना करते समय कैसे करेंगे? दंडवत प्रणाम किए। हम लोग को तो बड़ा आसान है, एक मुंडू है, एक बार दंडवत कर दिए, हो गया दंडवत प्रणाम, पूरा हो गया, एक बार नीचे गिरने से हो गया सीधा। ब्रह्मा जी की दिक्कत यही है कि उनका चार मुंड है, पूरा 360 डिग्री जब तक नहीं लेंगे तब तक तो प्रणाम कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि एक प्रणाम के एक सर नीचे लगा, फिर एक पलट मारेंगे दूसरा सर नीचे लगेगा आधा हुआ, फिर और एक पलटी मारेंगे तीसरा सर नीचे लगेगा 75% हुआ, पूरा और एक राउंड मारेंगे तब कंप्लीट प्रणाम होगा। प्रणाम तो है ना दंडवत, मैंने सारे मस्तक लगना चाहिए, वो एक मस्तक लगे तो 25% होगा ना, तो पूरा प्रणाम करने के लिए कंपूर्ण 360 डिग्री पूरा राउंड करना पड़ेगा लेटे लेटे, तब जाकर प्रणाम एक बार कंप्लीट होगा उनका। विचार ऐसे दंडवत प्रणाम करे लेट पोट होकर के हाथ जोड़ करके प्रार्थना, बहुत बड़ी लंबी स्तुति किए। तो इस स्तुति में वो कहते हैं ब्रह्मा जी, हे प्रभु मुझे माफ कर दो। अब बहुत बड़ी लंबा, मुझे मैं कान पकड़ता हूं, नाक रगड़ता हूं, दंडवत करता हूं, माफ कर दो प्लीज एक्सक्यूज मी, बहुत सारे बोले। तो मानो बालक रूप में भगवान करते, बोले ब्रह्मा आप इतने बड़े पुरुष, मैं छोटा सा नाटा सा ग्वाला हूं, बछड़ा चरा गाय भी नहीं चरा सकता, बछड़ा चरा नहीं बच्चे पाल हूं, ये काहे कि मुझे इतने दंडवत ठोक रहा है, इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहा है, काहे कि सब चला रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या इतने कर रहे हैं आप, ये है वो है ये है क्या, मैं तो बछड़ा चराने वाला हूं भाई, ये काहे को कर रहा है। नहीं माफ करो, आप मेरे बाप है, आप मेरे पिता है, आप मेरे माता है, माता पिता दोनों है, माँ तो थे, माँ से प्रकट नहीं हुआ, आप मेरा माँ आप मेरा बाप, मैं आपके छोटा बच्चा लाल्य हूं पाल्य हूं। तो छोटा बच्चा कभी माँ बाप के गोद में टट्टी पिशाब कर देता है तो उसको थोड़ी कुछ गलती सलती कर देता है, कोई पैर लग जाता है रोते धकते तो उसको माँ बाप थोड़ी फेंक देंगे, हट मेरे से असद व्यवहार कर रहा है, गलत व्यवहार कर रहा है, एटिकेट पालन नहीं करता मेरे के साथ, तो उस साथ ऐसे व्यवहार करेंगे क्या, नहीं क्षमा कर देंगे, सारे दोष क्षमा करके गोद में ले लेंगे। तो ऐसे मैं आपके छोटे बालक मान करके, आपके बहुत अबोध शिशु मान करके मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान देख करके तो ब्रह्मा क्या हो गया, तेरे चार मुंह मुंड है, हैं इतने बड़े शरीर आपका है, हंस वाहन चढ़ करके वो ऊपर से नीचे उतरा, और मैं छोटा बालक बछड़ा चराने वाला मुझे बोलता है कि अबोध शिशु करके मेरे माम मेरे बाप मुझे माफ कर दो, ये काहे को ऐसा कर रहा है, ये तेरे बाप तो नारायण है जो गर्भसाई विष्णु है, वो तेरे बाप है ना, मुझे पता है तेरे बाप तो है तो मुझे क्यों ऐसे प्रार्थना कर रहा है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि सार ये बहानाबाजी मत कीजिए, मैं जानता हूं मेरे पिताजी गर्भसाई विष्णु है और उनके भी सृजक है महाविष्णु कारण साई विष्णु है, लेकिन आप उन सारे बापों के बाप है इसलिए मुझे माफ कर दो। आप बोलते हैं मेरे पिता नारायण है ना, नारायण तो है मैं मानता हूं, लेकिन सारे नारायणों का मूल नारायण तो आप ही है, ऐसा क्यों कह रहा है। तो इसी बात को ब्रह्मा जी के वक्तव्य को यहां प्रमाण के रूप में दिए कर बोलते हैं। शुरुआत करते हैं जो 38 नंबर श्लोक से आपका, ब्रह्मा जी कहते हैं प्रमाण करते हैं, बोले तू कैसे बोलता है कि मैं मूल नारायण करके, क्या प्रमाण है तेरा, मैं बछड़ा चरने वाला ग्वाला हूं तो कहां नारायण के साथ मुझे बोलता है। तो इसलिए कहते हैं नारा शब्दे कहे सर्व जीवेरा नीचे, तो प्रमाण करते हैं, बोलते आप नारायण नहीं, प्रमाण करो दिखाओ ना करो, तो ब्रह्मा जी ने प्रूव करते हैं कि वो जो बछड़ा चराने वाला ग्वाल वाल था वो ही मूल ओरिजिनल नारायण है ब्रह्मा जी के प्रमाण। ये जो चार प्यार में आप पढ़ेंगे, पहले 38 में कहते हैं नार शब्द कहे सर्व जीवेर निचय, नार रूप जो शब्द है, नार शब्द का अर्थ क्या है, ना संपूर्ण नर मतलब मनुष्य, संपूर्ण नरों का समष्टि उसको कहा जाएगा नार। जैसे आप समझें कैसे, जैसे जमुना का जल तो इसलिए कहेगा जामुन, जमुनास्य जामुन, ऐसे शब्द उच्चारण होता ना, उनका होने से आकार लग जाता है। तो संपूर्ण नरों का समवाय समष्टि को नार कहा जाता है। तो नार मतलब कंप्लीट जन समुदाय, उनका आयन आप है। नार आयन, नारायण शब्द दो आता है शब्द, नार आयन। नार शब्द का अर्थ है समस्त प्राणी मात्र का समष्टि, यह है नार शब्द। और आयन शब्द होता है ये जो समष्टि का जो आश्रय हो, जिसके आधार में ये संपूर्ण प्राणी मात्र संपूर्ण नर अवस्थित हो, उसको कहा जाएगा नारो के आयन रूपी नारायण। तो इसलिए संपूर्ण जीव जगत के जब नार होंगे तो उनके आश्रय कौन है? आप तो आश्रय है ना, तो इस रूप में आप नारायण है, इसी को बोलते हैं। नारा शब्द कहे सर्व जीवेर नीचे, संपूर्ण जीव का समष्टि है नार। और आयन शब्द कहे तो हर आश्रय, आयन शब्द होते आश्रय, बिल्कुल प्रमाण कर दे नारायण का अर्थ यही होता है। अतएव तुम ही हो मूल नारायण, देयरफोर अतएव इसलिए आप मूल नारायण हो, क्योंकि संपूर्ण समष्टि का मूल हो। यही एक हेतु सुना, द्वितीय कारण बोलते एक तो एक बता दिया, क्योंकि आप ओरिजिन है, आपसे ही सारे सृष्टि हुआ है उद्भूत, इसलिए आप मूल नारायण हो। अगर आप उसको नहीं मानते, मैं तो छोटा सा बछड़ा चरने वाला बालक हूं मुझके बोलते, तो दूसरा कारण बताता हूं सुनो, इसे नहीं मानते तो दूसरा बताता हूं। क्या दूसरा कारण? यही एक सुना द्वितीय कारण। क्या द्वितीय कारण? जीवेर ईश्वर पुरुषादि अवतार, जो संपूर्ण जीव है उनके जो मालिक हैं ये है पुरुष अवतार, पुरुषादि अवतार। काले अवतार तीन प्रकार के पुरुष हैं, पुरुष अवतार तीन प्रकार के, त्रिविध प्रकार। ये संपूर्ण जीवगण के जो मालिक है ये पुरुषत्रय है, जीवर ईश्वर पुरुषादि अवतार। तहां सवार हैते तुम्हार ऐश्वर्य अपार, बोलते हैं ये जो संपूर्ण जीव है कंप्लीट, अंडांतरस्थ परमाणु च अंतरस्थं, छोटे छोटे कीट पतंग से लेकर के, जो कीट पतंग हम देखते हैं उसको हम कीट, जिसको नहीं देखते हैं जिसको क्या बोलते हैं, एक मशीन में देखते हैं माइक्रोस्कोप, अणुवीक्षण यंत्र क्या बोलते हैं माइक्रोस्कोप, उसमें देखते हैं, उसमें भी जीव जंतु दिखाई पड़ते ना, जो कोई परीक्षा निरीक्षा करते हैं जीव जंतु, हम जो देख इस आंखें में देख नहीं सकते इसमें देखते हैं, इतने सूक्ष्माति सूक्ष्म जीव जंतु है उसके अंदर भी आप बैठे हुए हैं उनके मालिक बन करके, बाहर नहीं बैठे, बाहर तो है ही, अंश के अंदर भी अपना आसन लगा हुआ, पता नहीं कितने सूक्ष्माति सूक्ष्म आप है। जिनको देखने के लिए अणुवीक्षण यंत्र चाहिए, इस जीव का हृदय अवकाश में खीर समुद्र बना करके बैठे हैं अपने, सोए हुए हैं लेटे हुए। तो बोलते हैं संपूर्ण जीव का, संपूर्ण छोटे बड़े सब प्राणी का मालिक के रूप में जो पुरुष है उसका नाम है परमात्मा, जानते ना नहीं, परमात्मा सभी के हृदय में है ना नहीं, प्रत्येक प्राणी का हृदय में घट घट वासी कहते हैं ना, वो परमात्मा है। बोले परमात्मा? हाँ परमात्मा है, सब छोटे बड़े प्राणी के अंदर तो परमात्मा बैठा हुआ है। अच्छा वो परमात्मा के असली नाम जानते हैं क्या है? खीरोदक साई विष्णु, खीरे सागर में सोने वाला पुरुष, उसी के नाम है परमात्मा। तो वो आप जीव मात्र के अंतर्जामित्व रूप में प्रत्येक प्राणी के हृदय कमल में आप बैठे ना, ना हो परमात्मा रूप में खीरोदक साई पुरुष है। बोले ओ खीरोदक साई पुरुष, उनके अंदर इस परम आत्मज्ञान परमात्मा रूप के जो पोस्ट उनको कहां से मिला, कौन अपॉइंटमेंट किया उनको, कौन उनको परमात्मा पोस्ट दिया, कैसे परमात्मा बने उन्होंने, ये शक्ति उनको कहां से मिला? बोले उनके अपॉइंटमेंट अथॉरिटी और एक पुरुष है, उनको परमात्मा काम में लगा रखा है। कृतज्ञ साहब विष्णु बोले तुम ये जगह सब जाओ, सब जगह घट घट वासी बन के रहो। वो कौन उसको अपॉइंटमेंट किया? बोलते हैं वो गर्भसाई। ब्रह्मांड के अंतर्जाम, एक ब्रह्मांड में अनेक जीव हैं, तो एक ब्रह्मांड के अंदर को भी जानने वाला, ब्रह्मांड को मेंटेन करने वाला, ब्रह्मांड अंतर्जामी भी एक है, उनका नाम है गर्भसाई विष्णु। एक गर्भसागर होता है, गर्भसागर का एक ब्रह्मांड होता है, और इसमें गर्भसाई विष्णु से ब्रह्मा निकलते हैं, ये ब्रह्मांड के मालिक होते हैं। तो गर्भसाई विष्णु एक्सपांड करके आपने कुछ सारे जीव जो जगत सृष्टि हो गए, सारे जीव के अंदर भी प्रवेश कर गए क्षीरसाई विष्णु करके। तो क्षीरसाई साई विष्णु के मालिक हुए कौन? गर्भसाई विष्णु एक पुरुष है, और वो पुरुष गर्भसाई रूप में ब्रह्मांड के मालिक, ब्रह्मांड के अंतर्जामित्व उनको कहां से मिला? बोले ओ सर्व कारण कारण, कौन है? कारण सागर में सोने वाले कारण दक्षाई, जिसको महाविष्णु रूप में कहते हैं, कारण सागर में सोते हैं, वो कारण सागर में सोए, वही सोए सोए इच्छा किए, उनके लोम कूप से असंख्य ब्रह्मांड निकला, और उस ब्रह्मांड के अंदर में ब्रह्मांड को पालन करने के लिए एक विष्णु हो गए, अपने पानी में सो गए, और उस पानी में ब्रह्मांड को फंसाते रहे गर्भसागर से, और उस ब्रह्मा पैदा करके जीव जगत लेकर के चलाए, और सारे जीव हो गए, जीव को कौन पालन करे? तो क्षीरदक्षा विष्णु हो गए। तो ये तीन पुरुष अवतार इस प्रकार से एक्टिवेट हो रहे हैं। बोले ये क्षीरदक्षाई जीव का ईश्वर जो हुए क्षीरदक्षाई पुरुष, उनके मालिक हुए गर्भसाई पुरुष, उनके मालिक हुए कारणसाई पुरुष, और इन तीनों पुरुष के जो मालिक है वो तो आप ही है। ये नाटक कर रहे हैं यहां, बछड़ा चरा रहा हूं, मैंने कुछ नहीं जानता हूं, कुछ नहीं जानते, सच बताओ। तो इस बोलते तहां सवा है ते जहार ऐश्वर्य अपार, तुम्हारा ऐश्वर्य। बोले ये जो पुरुष अवतार है उनके ऐश्वर्य से, मैंने उनके प्रभाव, उनके शक्ति, उनके ताकत से आपका शक्ति, आपके बल, आपके पराक्रम का कोई सीमा ही नहीं, अपार है। ब्रह्मा जी कहते हुए कहते हैं ये सबसे बड़ा विष्णु के बारे में कहते हैं ब्रह्म संहिता में, क्या श्लोक है?
जस्ये कनिश्वसित कालमथावलंब्यो जीवन्ति लोम बिलजा जगदंडनाथः विष्णुर महान सहि अजस्य कला विशेषो गोविंदम आदि पुरुषम तम अहं भजामि। हे गोविंद आदि पुरुष, मैं तो अहम तम भजामि, मैं आपको ही भजन करता हूं। तो बोलते हैं क्या? जस्य एक निश्वसित काल अथ अवलंब्य, जिनका एक निश्वास काल को अवलंबन करके, निश्वास जानते ना, हम सभी हमेशा निश्वास प्रश्वास लेते हैं, इसके बिना तो मर जाएंगे, लेते ना निश्वास प्रश्वास। निश्वास मतलब जो निष्कासन करते हैं, आप प्राणायाम वगैरह करते हैं ना, रामदेव बाबा के फॉलोअर कोई होंगे, निकालते जो निष्कासन कहते हैं, ये निश्वास है, और जो लेते हैं वही प्रश्वास प्रवेश करता है, श्वास का प्रवेश प्रश्वास, निकलना है निष्कास निश्वास। तो ये दो काम के बिना तो हम राम नाम सत्य हो जाए, तो उसको तो हमेशा लेते हैं, चाहे आप बैठो उठो सो खाओ पियो, उसके बिना तो काम ना चले। तो आप लोग बहुत भारी सामर्थ्यवान व्यक्ति हैं सब दिल्ली वाले, तो आपके एक निश्वास समय मतलब एक्सेल जो करते हैं उसको क्या बोलते हैं रामदेव बाबा जी, वो प्राणायाम भाषा में कपालभाति, कपालभाति जब करते इसे निकालते हैं तो कितना समय तक निकाल के रखते हैं, बाहर निकाल करके फिर नहीं लेंगे बंद कर, कितने समय तक रख पाएंगे? एक सेकंड नहीं, और एक मिनट, आपसे एक मिनट रखते हैं, 60 सेकंड रखेंगे, और कोई प्राणायामकारी अभ्यास कोई किए होंगे? प्रभु जी नेचुरोपैथी वाले हैं, ज्यादा किए होंगे शायद। एक दो मिनट तक जाएंगे, एक मिनट बस। तो हम लोगों का बड़े मुश्किल से जो प्राणायाम अभ्यास किए उनका निश्वास काल कितने होता है? एक मिनट आप बोलते हैं। और कोई भारी बाबा आचार्य हो तो दो तीन मिनट तक जाए, तीन मिनट से तो ऊपर कोई आशा नहीं कर सकते, है ना? बहुत बहुत भारी अभ्यास करके जोगेश्वर माने जोगाचार्य स्थिति में जो गया वो ढाई तीन मिनट तक निश्वास काल उनका हो पाएगा। तो यहां ब्रह्मा जी कहते हैं जस्य एक निश्वसित काल, जिनका एक निश्वास का काल, निश्वास के समय कितना है ना, इस समय को सांस निकाल दिया, सांस निकाल दिया, निश्वास लिया, सांस निकाला, निश्वास निष्कासन किया, यही समय में, अभी अंदर प्रश्वास नहीं लिया, यही निश्वास काल में, वही एक्सेल के समय में क्या हुआ ना, इसी के समय को अवलंबन करके जस्य एक निश्वसित काल अथ अवलंब्य जीवंती लोम बिलजा जगदंडनाथा। ये निश्वास की समय के अंदर आपके लोम से, लोमकूप से ब्रह्मांड निकला, ब्रह्मांड निकला, निकल कर इधर उधर भागा, कहां जाऊं कहां जाऊं, तो फिर ब्रह्मांड के पुरुष गर्भसाई विष्णु निकले, गर्भसागर सृष्टि किए, गर्भसागर से ब्रह्मांड को टिकाए पानी के ऊपर, तो फिर ब्रह्मांड, ब्रह्मांड को कैसे पालन करेंगे, कैसे काम में आएगा, तो उनके नाभि कमल से कमल निकला, नाभि से उसके कमल के ऊपर पद्मजनी ब्रह्मा पैदा हुए। अभी निश्वास अभी चल रहा है, समय प्रश्वास नहीं लिए, ब्रह्मा पैदा हुए। ब्रह्मा पैदा हो करके ब्रह्मा जी के आयु कितना जानते हैं? नहीं, ब्रह्मा जी के एक दिन के हिसाब में बताता हूं। ब्रह्मा जी के एक दिन को शास्त्र में कहा गया एक कल्प। ब्रह्मा जी बहुत हाथ पर जोड़े, भगवान बोले चलो मैं हर दिन में एक बार आऊंगा, कल्पे कल्पे सुजामी हम, एवरीडे में आऊंगा। तो ब्रह्मा जी का एवरीडे कितना है? तो शास्त्र कहते हैं ब्रह्मा जी का एक दिन होता है 1000 चतुर्युग, मतलब दिन, रात नहीं है, रात फिर 12 घंटा अलग है, मतलब ब्रह्मा जी के 12 घंटा के समय कितना होता है? 1000 चतुर्युग। एक चतुर्युग का जानते हैं कितना होता है? जैसे अभी हम लोग जो युग में है उसका नाम है कलिजुग, कलिजुग का अवधि है 432,000 साल। हिसाब ठीक से जोड़िए, कलिजुग का ड्यूरेशन हुआ 432,000 साल, उसके जस्ट डबल, दो गुना होगा द्वापर का, तो कितना होगा? 864,000 साल होगा द्वापर का, तो कलिजुग का 3 गुना होगा त्रेता का, हिसाब कर लो, ऐसा होता 12 लाख से वो बोल दिए 96,000, तो ये हुआ त्रेता का। और कलिजुग का 4 गुना होगा सत्य का, 17 लाख समथिंग। तो ये 4 युग का ड्यूरेशन को मिला दो, 4 युग का अवधि को, समय को मिला दो, तो होगा 1 चतुर्युग, तो कितना साल होगा? 43,20,000 लगभग, 43,20,000 साल होगा 1 चतुर्युग। तो 1 चतुर्युग जब इतना होता है तो 12 घंटा ब्रह्मा जी कितना होगा? 1000 गुना करो उसमें, 43,20,000 इंटू मल्टीप्लाइड बाई 1000, ये उनका 12 घंटा। तो 24 घंटा करने के लिए उनसे फिर 2 गुना करो, मतलब दिन रात में निकल के 43,20,000 इंटू 1000 इंटू 2, तो उनका एक दिन हुआ। कोई हिसाब कर रहे हैं? कर पाएंगे? एक दिन उनका हुआ, तो एक दिन को एक हफ्ता करो, एक वीक, फिर 4 हफ्ता करो, 1 महीना होगा, फिर 12 गुना करो, 1 साल होगा। तो इसी हिसाब से 100 साल जीते हैं, इसी हिसाब से 100 साल परमय होता है ब्रह्मा के। तो ब्रह्मा बोलते हैं कि मैं जन्म हुआ, मैं जन्म होने से पहले तो ब्रह्मांड हुआ, गर्भसाई विष्णु है, बहुत सारा काम हुआ, मेरे फिर जन्म हुआ, जन्म हो करके मेरा परमायु पूरा हो गया, मतलब मेरा 100 साल पूरा हो गया, पूरा हो करके मैं जब अंदर गया तो किसे अंदर गया? जो आप सांस अंदर लिए तो उसे अंदर गया, उनका एक्सेल तब या प्रश्वास लिया आपने, तब लिया इतने समय आप कितने उनका निश्वास काढ़ा कितना हुआ हिसाब करो कितने मिनट हुआ, आपने मिनट हिसाब से गिनते ना, मिनट हिसाब से गिनो कितना उनका निश्वास काल कितना हुआ, आप कंप्यूटर कंप्यूटर कैलकुलेटर में हिसाब हो सकता उनका निश्वास काल। तो बोलते हैं जिसका जस्य एक निश्वसित काल अथ अवलंब्य जीवंती लोम बिलजा जगदंड नाथा, अनेक अनेक ब्रह्मांड जगत अंड प्रकट हो गया, उसे ब्रह्मा प्रकट हो गए, उनके परमायु पूरा हो गया एक निश्वास के टाइम के अंदर। वो कौन है ईसा पुरुष भाई इतने लंबा निश्वास इसका है, जैसे एक निश्वसित काल मथावलंब्य जीवंती लोम बिलजा जगदंड नाथा न सा विष्णु। वो कौन है पुरुष, वो विष्णु है। कौन सा विष्णु है, महाविष्णु, सा विष्णु महान, वही महाविष्णु है जिनका एक निश्वास का ड्यूरेशन इतनी लंबा है, जगत सृष्टि होकर के नाश हो गया लीन हो गया इतने लंबा समय, सा विष्णु महान। अच्छा ये महाविष्णु इतने विशाल है, उनके एक निश्वास ही इतने लंबा होता है, बोले इतना नहीं सुनो और ढंग से, स विष्णु महान स इह, वही महाविष्णु जिसके एक कला विशेष है। अरे वो विष्णु उनका परिचय क्या ना, ये तो एक कला मात्र है। कला शब्द का अर्थ जानते हैं, कला शब्द जैसे आप हैं, आपके शरीर है पूर्ण, मैं मेरा ये मेरे फुल बॉडी है, पूर्ण शरीर है, इस शरीर का एक अंग होता है एक हाथ, हाथ को शरीर का एक अंग माना जाएगा, एक अंश है हाथ, शरीर होगा अंशी, उनका अंश हुआ एक हाथ, तो इस अंश का भी अंश होगा क्या है अंगुली, ये हैगा अंश के अंश, और एक अंश का अंश होगा आपके नाखून ये टिप। तो इसी प्रकार पूर्ण का भाग होगा अंग, अंग का एक और भाग होगा अंश, इस अंश का एक भाग होगा अंशी, इस अंशी का एक भाग होगा कला, आ समझ में ना, कला किसको बोलते हैं। तो इसी प्रकार ये जो महाविष्णु है जिनका एक निश्वास काल के ब्रह्मा के परमायु ब्रह्मांड के परमायु पूरा हो जाता है, वो महान विष्णु तो एक कला विशेष कला है, एक विशेष कला है। किनका कला है भाई, वो पुरुष कौन है, सह्य जस्य कला विशेषो वो है गोविंदम, वो गोविंद का एक कला है महाविष्णु, वो गोविंद जो आदि पुरुष है उनको मैं प्रणाम करता हूं। आया समझो गोविंद का, उनका निश्वास बारे में कोई अंदाज लगा सकते हैं, ए गोविंद इधर बछड़ा चराने वाला खड़े हैं, हम उसको इसी दृष्टि देखते हैं, अरे बछड़ा चराता है कनुआ है छोटा लड़का है बेचारा। ब्रह्मा जी बोलते हैं मैं देख रहा हूं आप ही है ना, आप ही गोविंद हो ना, आपके एक कला मात्र से पुरुष रूप में आए महाविष्णु, और उनका एक एक झुंक बाहर निकाल दिए अनंत कोटि ब्रह्मांड, अनंत कोटि ब्रह्मा, उनके सारे परमायु, और एक ब्रह्मा के एक दिन में, ब्रह्मा जी के एक दिन में बोलते 14 मनु सम्राट होकर के राज्य शासन करके रिटायर कर जाते हैं। हमारा सरकार होता है बहुत भारी बहुमत में सरकार हुआ तो 5 साल, वो भी पूरा हो पाएगा नहीं, बीच में भंग टूट जाएगा फूट जाएगा पता नहीं, ऐसा भी होता ना कभी, 2-4 साल में भी परमायु पूरा हो जाता है। अगर फुल पोटेंशियल परमायु रहा तो 5 साल, दोबारा फिर जन्म लेना पड़ेगा 5 साल के लिए फिर होना पड़ेगा लेकिन मनु सरकार, एक जो मनु राजा बनते हैं उनका सरकार कितने दिन तक चलता मालूम है, 72 चतुर्युग, कितने साल तक, 72 चतुर्युग, एक चतुर्युग का हिसाब तो बताया था ना मैंने, 43,20,000 होता है एक चतुर्युग का, उनके 72 गुना करो, एक मनु महाराज का रूलिंग पीरियड है। तो एक मनु को अपॉइंट करेंगे सुबह सुबह, वो अपने रूलिंग करके खत्म हो जाए, फिर दूसरा अपॉइंट करेंगे वो पूरा शासन करेगा खत्म हो जाएगा, फिर तीसरा अपॉइंट करेंगे वो रूलिंग करके खत्म हो जाएगा, ऐसे 14 मनु अपॉइंटमेंट करेंगे, अपना अपना फुल राजनीति करके रिटायर्ड हो जाएंगे तो शाम होगा। ब्रह्मा जी का शाम होगा, सुबह से शाम में दिन भर के अंदर 14 मनु, एक एक मनु 72 चतुर्युग शासन करके चले जाए तब शाम हो पाएगा उनका। तो यही से ब्रह्मा जी के परमायु के काल जिसका एक एक्सेल के समय निश्वास निकाल दिए इतना है, वो महाविष्णु जिनके कला मात्र है आप, वही गोविंद में आपको प्रणाम करता हूं, मेरे सामने वत्स पालक रूप में खड़े हो, ये कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि तुम्हारा ऐश्वर्य अपार, आपका ऐश्वर्य का कोई पार पा सकता है? कौन सा मशीन है, दिमाग है, गणना कर पाएगा? आपके निश्वास के समय को कोई गणना कर पाएगा? और क्या जानेंगे आपके बारे में? नथिंग, कुछ नहीं जान सकते। तो इसको कहते हैं, अतएव अधीश्वर तुम्हें सर्व पिता, तुम्हारा शक्ति ते तारा जगत रखिता। देयरफोर अतएव अधीश्वर तुम्हें सर्व पिता, इसलिए तो आप ही वास्तविक ईश्वर है, अधिकार पूर्वक ईश्वर है। अधीश्वर ये सब ईश्वर है, ये सारे ईश्वर का अधिकारी आप है, आप अधीश्वर है, आपके अधिकार है। अधीश्वर तुम्हें सर्व पिता, ये जितने सारे ईश्वर है ना, सबके पिता तो आप ही हैं। मैं तो वो आपके पुत्रों के पुत्रों के पुत्रों के पुत्रों के हिसाब नहीं हूंगा, मैं तो ब्रह्मा हूं भाई। गर्भसाई विष्णु से निकला, गर्भसाई विष्णु के ऊपर तो और विष्णु है, उसके ऊपर और कितने हैं। मेरे से आप कहते हैं तो मेरे के पिता तो नहीं कह सकता हूं, क्या कहूंगा? दादा के ऊपर कौन सुनाना बोलते ना, क्या बोलते हैं? परदादा, परदादा के ऊपर फिर भाषा ही नहीं हमारे पास। हमारे पास कोई भाषा नहीं बोलने के लिए, उनको क्या कहें? ग्रेट ग्रैंड फादर करके भी उसका ऊपर छोड़ दो, वो जो होगा वो। तो बोलते हैं तुम्हें सर्व पिता, सारे पिताओं के पिता, अधीश्वरों के पिता आप है। तो तुम्हारा शक्ति ते तारा जगत रखिता, आपके शक्ति में एक शक्ति उनको दे दिया पोटेंसी, इसी में जगत रखिता बन करके महाविष्णु, कारण साई विष्णु, गर्भ साई विष्णु, खीर साई विष्णु, ये सब बने हुए जगत रक्षक, जगत कर्ता, ब्रह्मांड कर्ता बन करके जो पुरुष अवतार विष्णु है, ये सब आपके शक्ति से है। आप तो शक्ति के आगार है, सब आपके शक्ति से है। कौन तुम्हारा शक्ति ते तारा जगत रखिता, नारेर अयन जाते करह पालन। तो इस प्रकार समस्त जीवगण के जो नार कहा जाए, इस जीवगण के जो अधिष्ठान, जो पुरुष अवतार जगत कर्ता महाविष्णु है, या गर्भसाई विष्णु, क्षीरसाय विष्णु, जो जीवगण के ईश्वर है, मालिक है, उन नार का पालन करता आप हो, उन नारायण का पालन करता आप हो, इसको कहते हैं। नारेर अयन जाते, इन नार का अयन नारायण को जो पालन करने वाला हो, जाते करह पालन, उनको आप पालन करते हो। अतएव हय तुम्हें मूल नारायण, इसीलिए आप मूल नारायण हो। अभी मानोगे ना? नहीं, और बोलू आगे, आपका 42 श्लोक पर्यंत दिया गया था, अब उसके बाद और प्रमाण ठोकेंगे। जब तक उसको मानेंगे नहीं, नहीं छोड़े ब्रह्मा जी बोले, नहीं आप मानना पड़ेगा, आप मुझे अपना नाती पोता करके मानना पड़ेगा, ऐसे कैसे माफ करना पड़ेगा मुझे? तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी इन बछड़ा चरने वाले ग्वाल बाल को ऐसे प्रमाणित करते हैं कि आप साक्षात मूल नारायण हो। और कविराज गोस्वामी कहते हैं यही जो साक्षात मूल नारायण के रूप में ब्रह्मा जी जिसको प्रमाणित कर दिए, वही मूल नारायण ही चैतन्य गोसाई बना, चैतन्य के रूप में वही आए हैं, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं। और आप उसको जो समझो, आपकी सुबुद्धि या दुर्बुद्धि आप जान लो, है ना। तो इस प्रकार इस अध्याय में कविराज गोस्वामी भगवत तत्व निरूपण करते हैं। उसको पढ़ने से कभी कभी आलस्य आता है, लगता है कि पता नहीं बहुत तत्वात है, बड़े समझ में नहीं आता है, सब बहुत हिसाब किताब बहुत है सब। तो इसी को कविराज गोस्वामी कहते हैं कि ये सब तत्व ज्ञान है, तो इसी को जान करके आलस्य मत करो। दुर्बोध तत्व ज्ञान करी न कर आलस, जहां है ते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। इनको नहीं जानोगे, नहीं समझोगे तो कृष्ण को समझ नहीं पाएंगे, मन नहीं लगेगा, जान ही नहीं पाएंगे तो कैसे मन लगेगा, बोलेंगे हाँ ऐसे है थे। तब इसे समझेगा, तब तब जाकर पता लगेगा। हम कहते हैं भगवान महान है, कैसे महान है ये जब पता चलते हैं ऐसे, तब जाकर भगवान को फिर थोड़ा आपका भाव हृदय जगेगा। तो आज और एक महा पार्षद महाप्रभु के चैतन्य महाप्रभु के पार्षद काला कृष्णदास, कालिया कृष्णदास के तिरुभाव तिथि, तो उनके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, समय है ना नहीं चलेगा आधे घंटा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। एई मते महाप्रभु रहे न नीलाचले, भक्तगण संगे सदा प्रेम विहले। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु जो पुरी में रहते हैं उनके बात को निर्णय करते हैं। इस प्रकार महाप्रभु पुरी में रहते हैं, हमेशा प्रेम में विफल होकर रहते हैं। वर्षांतरे आईला सब गौड़ेरा भक्तगण, पूर्ववत आशी कैला प्रभुर मिलन। हर बरस गौड़स देश से नवदीप मायापुर साइड से सारे भक्त लोग आते थे चैतन्य महाप्रभु से दर्शन करने के लिए, मिलने के लिए रथ यात्रा के समय में। इस बार भी आए, महाप्रभु से भेंट मिलन किए। ता सवारा संगे आई लोग कालिदास नाम, इस बार जो भक्त लोग आए थे उनके साथ एक महापुरुष आया था जिनका नाम था कालिदास। ता सवारा संगे आई लोग कालिदास नाम, कृष्ण नाम बिनाते हो ना ही जाने आन। उनका विशेषण क्या था, कालिदास का विशेष गुण क्या था? कृष्ण नाम बिनु तेह ना ही जाने आन। कृष्ण नाम के अलावा और कुछ जानता ही नहीं, सोते बैठते जगते खाते पीते हमेशा कृष्ण 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 ही कृष्ण, कृष्ण नाम के अलावा कुछ नहीं जानता हूं, इसी को परिचय देते हैं। वो कालिदास का परिचय क्या है? जो कृष्ण के अलावा और कुछ नहीं जानता, हमेशा कृष्ण कृष्ण करता रहता है, वही कालिदास है जो आया इस बार। महाभागवत ते हो सरल उदार, कृष्ण नाम संगेते चलाय व्यवहार। समझ में आता है क्या बोलते हैं? बोलते हैं महाभागवत ते हूं सरल उदार। वो महाभागवत थे, बहुत सरल बड़े उदार थे। दूसरे लाइन जो कहते हैं कृष्ण नाम संगेते चलाय व्यवहार, इसको समझ में आता है इसका अर्थ? कृष्ण नाम संगेते चलाय व्यवहार, नहीं समझ में आता ना? उसका अर्थ है जैसे हम है, सुबह से शाम तक जब जगते रहते हैं कितने व्यवहार करते हैं ना, बात करते हैं, बैठते हैं, सोते हैं, गाली देते हैं, झगड़ा करते हैं, खाते हैं, पेशाब करते हैं, और किसी को कोई बात करते हैं, ऑर्डर देते हैं, किसकी बात सुनते हैं, कई सामान ले जाते हैं, ले आते हैं, गाड़ी चलाते हैं, कई प्रकार के व्यवहार करते हैं ना पूरा दिन भर में। ये सारे व्यवहार में किसी प्रकार की बात करते हैं, बहुत सारे बात करते हैं, कई प्रकार शब्द उच्चारण करते हैं ना, नहीं इसको व्यवहारिक, इसको व्यवहार कहा गया, व्यवहारिक शब्द। व्यवहार के लिए इसे इसे करना पड़ता है, इस प्रकार के अंग भंगी करना पड़ता है, इस प्रकार शब्द उच्चारण करना पड़ता है, इस प्रकार के अंग प्रत्यंग इंद्रिय चालना करना पड़ता है, इसे व्यवहारिक। तो ये महाभागवत कालिदास ने उनका जो दैनदिन प्रतिदिन जो व्यवहार करते थे, सुबह उठकर कि अब टाइम क्या हुआ, अब कहां जाऊं, आज प्रसाद में क्या है, प्रसाद खाऊं, कोई बात पूछे, कुछ करे, दिन भर जो भी व्यवहारिक कार्य है सभी में कोई दूसरा शब्द उच्चारण कर ही नहीं रहे थे। क्या कर रहे थे? कृष्ण 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 कृष्ण, मन अंग भंगी करते थे बात का, जैसे पानी है कि नहीं, पानी कृष्ण 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 कृष्ण, अंग से जो भंगी करके, अंग प्रत्यंग से जो कला करके दिखाएंगे कि तक समझ में आएगा क्या बोल रहे हैं, लेकिन उच्चारण क्या करेंगे, शब्द कृष्ण, दूसरा कोई शब्द उच्चारण नहीं करेंगे, कृष्ण शब्द उच्चारण करके एक्शन ऐसा करेंगे अब समझ में आ जाए क्या बोल रहे हैं, आ समझ में। इसी कहते हैं कृष्ण नाम व्यवहार, यही इसका अर्थ है। कृष्ण नाम संगते चलाए व्यवहार, व्यवहार को चलाते हैं कृष्ण नाम के साथ में, सारे काम करते हैं, बाकी कोई शब्द उच्चारण नहीं होता, केवल कृष्ण ही नाम के साथ व्यवहार चलता है उनका। हाँ, जैसे कोई शब्द कोई वस्तु एक लाने के लिए कृष्ण कृष्ण, ए कृष्ण कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, ये समझ में आ गया, ये चीज लाकर यहीं रखो। हम इतनी भाषा कहे, ओ ये सब नहीं कहेंगे, ओ कृष्ण 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 करते रहेंगे। जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तो आप चले जाएंगे, बोले क्या बकवास करता रहे। तीसरा है कि जब तक कोई समझने वाला आएगा, समझ कर ला के रख देगा, तब तो मंदिर हो गया काम, तब तक बोलते रहेंगे। हमारे जैसे मूढ़ व्यक्ति बोल जाए, दिन बीत जाए तो समझ नहीं पाए। लेकिन वो महाभागवत है, उनका काम ऐसे चलता था। उनके साथ में जो रहने वाले महाभागवत के साथ, वो भी तो कम संग भागवत होंगे, महान नहीं होंगे तो ऑर्डिनरी तो होंगे, सादा तो होंगे, तो वो समझ पाते थे। तो इस प्रकार कृष्ण नाम संगत चला व्यवहार। कौतु कहते तिहो यदि पासक कहलाए, कभी कभी पासा भी खेलते थे। पासा खेलना जानते ना, चेस, पासा गोटी फेंकते है ना, हाँ चेस फेंकते थोड़ी। कौतुके तेहो यदि पासक खेलाए, हरे कृष्ण करी पासक चालाए। हैं कच्चे बार छह आज जो दाना गिर गया उसी को डाक करके बांधते ना। आप पसा तो नहीं जानते, लूडो पाली खेलते होंगे। लूडो में छह आ जाए, तीन आ जाए, पांच आ जाए, इसे बोली डाक करके फेंकते हैं ना गोटी। तो वो जब गोटी फेंकते हैं कैसा बोली डाकते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा, हरे हरे, हरे राम राम राम, यही बोलते हैं। हरे कृष्ण करी पासक चलाए। वो जब खेलता है गोटी, वो भी हरे कृष्ण करके फेंकता है। अरे हरे कृष्ण कोई दाना थोड़ी है उसमें, लेकिन वही बोलेंगे तो उसको कुछ बोलेगा नहीं दूसरा नाम। हरे कृष्ण करी पासक चलाए। रघुनाथ दासरत हूं हय ज्ञाति खुड़ा। अब आप लोग कैसे समझेंगे, आजकल सब हाई एजुकेटर ना इंग्लिश मीडियम से पढ़े, इंग्लिश मीडियम में पढ़े तो सबसे पहले खतरनाक तो हमारा संस्कार के ऊपर उठा रघात हुआ, हमारा संबंध ही सब खत्म कर दिया, रिलेशन ज्ञान भूल गए हमने। भगवद गीता के प्रथम अध्याय में अर्जुन ने भगवान को कहता है एक श्लोक में, लगभग 11-12 संबंधी, श्याला संबंधी, ससुर मामा काका, कितने संबंधी के गिनाया, संबंधी तथा इस श्लोक में, और उसको इंग्लिश में अंकल करके होलसेल मार दिया। लो 11 संबंध को एक में अंकल मार दिया। अरे ये कौन माँ के संबंध से अंकल है, कि पिता के संबंध में अंकल है, कि कौन से संबंध में अंकल है, कि सर्वसाधारण के संबंध अंकल है, कोई पता नहीं। ज्यादा से ज्यादा बोले बोले फादर इन लॉ, अरे आईन के हिसाब से पिता, आईन की माता, ऐसे क्या होता है लॉ के हिसाब से। कानूनी माता कानूनी पिता, ऐसी दुर्भाग्य हमारा हो चुका है, कोई संबंध नहीं, खत्म संबंध ज्ञान भूल गए हम लोग सब। जो इंग्लिश में पढ़े उनको पचाओ तो अंकल बोले खत्म, होलसेल मारेंगे, संबंध क्या बता पाएंगे, संबंध ज्ञान खत्म ही हो गया हमारा। तो इसलिए अब ये कैसे समझेंगे, मैं कैसे समझ पाऊंगा उसको। बोलते रघुनाथ दासरत हूं हय ज्ञाति खुड़ा। खुड़ा शब्द कैसे समझा मैंने उसको, रघुनाथ दास के ये खुड़ा है। हम बोलेंगे खुड़ा के अब हिंदी डिक्शनरी में नहीं मिलेगा, क्योंकि हम लोग हिंदी भाषा वासी हैं जरूर, लेकिन हिंदी भाषा के सही ज्ञान नहीं हमारे पास। अंग्रेजी इतने डाल रखे हैं, इतने आदत बुरी हो चुका है कि समझ नहीं पावे। ये अंग्रेजी भाषा से कैसे भाव प्रकाश होगा। अंग्रेजी भाषा का जो शुरुआत हुआ है वो 26 अक्षर से हुआ, टोटल फंडामेंटल लेटर 26 है ना, और हमारा जो भाषा है उसमें 49 है, उसका डबल अक्षर से शुरू हुआ। तो उसमें जो भाव प्रकाश हो सकता है उसमें हो सकता, तो एक शब्द में 50 भाव देखेंगे तो कैसे होगा। तो इसलिए होलसेल मारते हैं सब, होलसेल में काम चला, रिटेल होगा नहीं इसमें, तो कैसे विविध संबंध को पहचानेंगे अपने। तो इसलिए मान लो ये अंकल का हिसाब से निस ऐसे कुछ होगा ना, इसे समझ लो क्या कहेंगे, ज्ञाति खुड़ा आप समझ नहीं पाएंगे। हाँ उनको थोड़ा पता, पुराना है ना, वो समझ गए। खुड़ी के पति को खुड़ा कहते हैं, खुड़ी होते हैं चाचा के पत्नी, उसको क्या कहेंगे अंग्रेजी, चाची, हाँ चाची, चाची होते हैं खुड़ी और चाचा होते हैं खुड़ा। और ज्ञाति माने इस प्रकार संबंध है उनके परिवार के हैं, उनके परिवार के संबंध रघुनाथ दास के, रघुनाथ दास को बोलते हैं रघुनाथ दास प्रसिद्ध हैं, कालिदास को नहीं जान, रघुनाथ दास को सब जानते हैं ना, हाँ वो वेल फेमस है, वो जो फेमस है रघुनाथ दास उनके उन्होंने खास चाचा लगेंगे, गांवली भाषा में खुड़ा कहते हैं उसको, रघुनाथ दास के खुड़ा चाचा लगेंगे, ज्ञाति खुड़ा। वैष्णव उचिष्ट खाईते तेहू हैल बूढ़ा, अब बोलते बूढ़े हो गया है अब तक, लेकिन अभी तक उन्होंने कभी अपना भोजन के प्लेट ही नहीं रखा, महाभागवत वैष्णव है उनका खाने का पात्र है ही नहीं। बोलते हैं कि बूढ़े हो चुके हैं उन्होंने, लेकिन उनके खाने का पत्तल नहीं, पात्र नहीं, पत्तल में नहीं खाते अपना डाल करके, अरे तेरे प्लेट लगाओ तेरा पत्ता लगा दो खाओ, कभी नहीं, नहीं खाते ना, खाते हैं कैसे खाते हैं, कैसे खाते हैं जानते हैं, हमेशा जाते हैं भंडारा खाने के लिए, फिस्ट खाने के लिए जाते हैं, बोलते हैं घर में गरीब घर है क्या मिलेगा, हमेशा जहां तहां निमंत्रण भंडारा होता जाते हैं, जहां पर भक्त लोग इकट्ठा होते हैं खाने के लिए, बोले तो ना हमारा घर में तुम आ जाओ, तुम्हारा घर में आओ करके बुलाते हैं, बड़े बड़े भक्तों को निमंत्रण करते हैं, जहां निमंत्रण सुनते हैं पता वता लगाकर वहीं पहुंच जाते हैं, पहुंचकर करते क्या, खाते क्या, नहीं 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 परिवेशन करते हैं, बोलते हैं कि मैं परिवेशन करूंगा प्लीज, बोलते हैं चलो भाई कोई फीस्ट में हमेशा हमको हेल्पर चाहिए, सर्विस ढूंढते ना सर्वेंट, कितने अनाउंस करते हैं प्लीज क्या वॉलंटियर के लिए, फिर भी कोई आते नहीं, कोई आते तो दो मिनट में फिर बैठ जाते हैं, बाल्टी पकड़ कर एक राउंड घूमे फिर बैठ गए, लेकिन वो बिना मूल्य में बिना बुलाए परिवेशन करने के लिए आ जाते हैं, फास्ट से लास्ट तक परिवेशन करते हैं, अंतिम क्षण तक परिवेशन करेंगे, अरे भाई आप बैठ जाओ, नहीं बैठेंगे कभी अपना पतल लेंगे, बैठेंगे ही नहीं, अरे फिर खाएंगे क्या, तो गए परिवेशन करते करते गया, सारे परिवेशन कर दिए, सब खाकर उठ कर चले गए, तभी भी नहीं खाएंगे पतल नहीं लगाएंगे अपना, परिवेशन करते रहेंगे सब खाकर उठ के गए, तब चुपचाप से बकेट फेट रखे हाथ धोकर बाहर आएंगे, खाएंगे नहीं, बोले फिर क्या खाते हैं, बाहर आएंगे देखे सब चले गए, आपने माला चंदन लेके पान फान तामुल खा के चले गए, तब जहां पे पत्तल सब फेंका हुआ है, झूठन पत्तल जहां, इसको क्या बोलते हैं डस्टबिन ना, अपने भाषा में क्या बोलते हैं, कूड़ेदाना, कूड़ेदान में जहां सबके पत्तल डोना जहां फेंका हुआ है, सब चले चल गए सुनसान हो गया, जा करके सारे कूड़ेदाना से पत्तल उठाएंगे, नोच नोच करके उसको खाएंगे सारे दाने से, ये उनका दैनंदिन भोजन था, अपना पतल होता ही नहीं था उनका, एवरीडे वो क्या भोजन करते थे, कोई थोड़ा खाया कस्सा लगा पीता लगा फेंक दिया कुछ जो भी, सब पूरे समस्त भक्तों का झूठन कूड़ेदाना से सब देखे, कोई नहीं चुपचाप झूठा उठाकर खाते थे, खाते थे, तो इसलिए बोलते हैं कोई एक दिन में नहीं देखा कब खाते हैं कैसे खाते हैं क्या खाते हैं, किसी को पता नहीं चलता, परिवेशन करने के लिए तो आ जाते हैं, सर्विंग करने के लिए, खाने कोई देखा नहीं उनको, बूढ़े हो गया तब तक कोई नहीं देखा कि वो कब खाते हैं क्या खाते हैं कैसे खाते हैं, हमेशा छिप करके खाते हैं बहुत गुप्त में, क्योंकि तो जो खाते हैं कोई देखने से बदनाम हो जाएगा, इसलिए हमेशा छिप कर खाते हैं, सब चले जाएंगे अब क्या करेंगे घंटों भर, तब जाएंगे सारे, कोई कहां फेंक दिया पत्तल उठा के दूर 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 तक जाएंगे, उस पत्तल ढूंढ ढूंढ ला करके चाट चूट कर उसको सब खाएंगे, कोई कोई ऐसे होता ना जो चूस चूस करके फेंक देते हैं तो उसको दोबारा चूसेंगे और चाट चूट इसी को खाएंगे, वही उनका प्रतिदिन भोजन होता था, बूढ़े हो गए तब तक इसी को खाते हैं। वैष्णव उचिष्ट यहां तेहो हैल बूढ़ा, बूढ़ा हो चुका केवल वैष्णव का उचिष्ट खाया उन्होंने और कुछ नहीं खाया, अपना भोजन तो उनका है ही नहीं, उनका भोजन क्या है ओनली उचिष्ट ही भोजन, उचिष्ट भोजी। गोड़ देशे हय जत वैष्णवेर गण सवार उचिष्ट देहो करी ल भोजन, देखिए पूरा इलाका पूरा गौड़ देश का एक स्टेट का जितने भक्त हैं कोई भक्त नहीं बाकी रहा कि जिसका झुटाव नहीं खाए, बोले गौड़ देश जितने भक्त गण है सबका झुटन तो खाया होगा क्योंकि घूमता रहता है उनका दिन भर, तो वही खाना है और क्या करेगा, नौकरी वोकरी करता नहीं, क्या धंधा है पता लगाता है, कहां भंडार भक्त लोग खाने जाते हैं, बस वहीं पहुंच जाएगा, पहुंच करके खूब सेवा करेगा और लास्ट में छक कर बैठेगा, सब चले जाने के बाद झूठा पत्थर उठा कर खाएगा। तो इतने सकल भक्तों का झूठन तो खाया है। गौड़ देश है जत वैष्णव रगण सवार उचिष्ट थे करील भोजन, ब्राह्मण वैष्णव जत छोटा बड़ा है। जब भंडारा में जाते हैं बड़े बड़े ब्राह्मण अपने छोटे बालक नाती पुत्र के भी साथ में ले जाते हैं, है ना, नहीं फिर घर में क्यों बनाएंगे, चलो सब वहीं खा के आ जाएंगे, सबको लेकर जाते हैं, बोलते जितने छोटे बड़े पुरुष स्त्री ब्राह्मण वैष्णव जितने हैं सबका झूठा खाए उन्होंने, कोई नहीं कि केवल उनका खाए उनका नहीं, सबका खाए, इसको बोलते हैं ब्राह्मण वैष्णव छोटा बड़ा जितने है सभी का। उत्तम वस्तु भेंट लया तारा ठाई जाए, कभी कभी बोलते हैं कि कोई वैष्णव ऐसे होते हैं कोई जाते नहीं, नहीं हम नहीं जाते किसी के घर में खाने के लिए, तो वो चालाकी करते हैं, बोलते उनका झूठा किसे खाए, बोलते चालाकी करते हैं उनके पास जाते हैं भेंट लेकर के, बढ़िया वस्तु खरीद करके लेकर जाते हैं, महाराज जी ये लाया था आज के बहुत अच्छा लीजिए, तो लगकर भेंट ग्रहण करेंगे खा पी रख दें, जब पता लगाएगा कब खाया कब फेंका, जब फेंका तब उसको जाकर खाएगा, तो इसलिए सबका खाया उन्होंने। तारठाई शेष पात्र लय न मांगिया, उनको खिला करके उनके शेष पात्र मांग के ले जाते हैं, कहां ना पाया तवे रहे लुकाया, बोले छिप करके रहता है कोई नहीं देख सकता है, भोजन करीले पात्र फैलाया जाए, लुकाया सही पात्र आनी चाटी खाए। मैं बता देना जब भोजन करके पात्र को जाकर के जो अपरिष्कार जगह फेंक दिया जाता है, क्या अच्छे जगह पतल छोटा पतल फेंकते हैं क्या, जो सबसे कचड़ा कूड़ा कूड़ा दाना, मैंने एक बार कूड़ा दाना जिसका नहीं है ये रोड के इस तरफ वहां जाकर फेंको अनाउंस करते हैं, हाँ थ्रो योर लिपलेट्स देयर, जहां पे ये सब गंदगी पड़ा हुआ है कोई नहीं जाएगा दुर्गंध है वहीं फेंक कराओ, यहां आसपास में फेंकना नहीं दूर जाकर यहां फेंको, वो सुनते रहेंगे अनाउंसमेंट, अच्छा मेरा भोजन अब यहीं होगा जहां से फेंकेंगे, सब चले जाएंगे छिप लुकाया मतलब छिप करके जाएंगे और चाटी खाए, उसको जा करके चाटते रहे, क्योंकि भक्त लोग तो अपने रिमिनेंट्स रखते भी नहीं, वो खा लेते हैं, बोलते हैं थोड़ा बहुत रस लगा वो चाटते रहेंगे, और 500 भक्तों का चाट चाट करके उनका पेट भर जाएगा, चाट चूट करके मतलब लुकाया सही पात्र आनी चाटी खाए, वही प्लेट को लाकर चाट चूट कर खाएंगे। शूद्र वैष्णव घरे जार भेट लया यही मते तारा उचिष्ट खाय लुकाया, बोले कोई कोई वैष्णव ब्राह्मण नहीं है शूद्र है अछूत जाति के हैं, वो तो कभी भी बोलेगा आप रघुनाथ गोस्वामी की खुड़ा है आपको मैं दूंगा झूठा पतल, नहीं 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 नहीं, नहीं कभी नहीं जाऊं, बोलते चालाकी करके उनका भी झूठन खाए उन्होंने, हाँ कैसे खाए, यही मत तारा उचिष्ट खाए लुकाया, ऐसे छिप करके खाते हैं चालाकी करके, भूई माली जाती वैष्णव झाड़ू तारा नाम, आम्र फल लयाता है गेला तारा स्थान। एक उदाहरण बताते हैं कब हुआ था, एक वैष्णव थे सप्तग्राम में छोट जाति के थे, क्यों जाति के भूमि माली मतलब जैसे कहते ना शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब के शेड्यूल ट्राइब कास्ट के थे वो, वो काम था क्या उनका झाड़ूदार थे, झाड़ूदार का क्या झाड़ूदार बोलते ना क्या बोलते हैं स्वीपर बोलेंगे, झाड़ूदार बोलेंगे समझेंगे नहीं, जमादार बोलेंगे करेक्ट जमादार। तो जमादार तो कौन हो सकता है जमादार, साधारण लोग कोई जमादार होगा, जमादार कौन कास्ट के होंगे, एसी वाले भंगी भंगी भंगी, वो भंगी थे झाड़ू ठाकुर उनका नाम था, झाड़ूदार थे भंगी थे वो, अति छोट जाति के थे, झाड़ू लगाने वाले काम करते थे, लेकिन थे भगत थे वैष्णव बिल्कुल, माला तिलक करके नाम जप करते थे, लेकिन छोटे जाति के थे भंगी थे, भंगी काम करते थे बेचारे, उनका नाम सब दिए थे झाड़ू ठाकुर वो ठाकुर तो है लेकिन झाड़ू ठाकुर उनके पास कोई जाएंगे नहीं झाड़ू देने वाला है तारा नाम। तो एक दिन वो कालिदास सोचने लगे गड़बड़ हो गया सभी का झूठन खाया लेकिन उनसे नहीं मिला मुझे कि क्योंकि भंगी है, वो तो कोई फीस्ट में उनको कहीं बुलाएंगे नहीं। भंगी को कोई भोजन में बुलाएगा क्या?
ना बुलाएगा,
कभी नहीं बुलाएगा उसको तो। वो तो उनको भोजन में बुलाएंगे नहीं तो फिर उनका झूठन खाएंगे कैसे? वो तो फीस्ट खाएंगे, आएंगे नहीं। तो कालिदास सोचने लगे मेरा मिशन पूरा नहीं हुआ, उनका झूठ तो मैं खा नहीं पाया, बाकी सब खाए। वो तो कभी भंगी है, उसका घर में किसी घर में खाने के लिए जाते नहीं, कोई बुलाते नहीं उनको, तो उनका झूठन में कैसे खाए नहीं पाया? उनके घर में तो मैं जा नहीं सकता, मुझे देखने से प्रणाम करेंगे क्योंकि भंगी है, मैं रघुनाथ दास के कुड़ा हूँ, देखने से दूर से प्रणाम करेंगे। लेकिन हे बड़े भक्त, उच्च कोटि भक्त है, छोटे जाति के हैं लेकिन हे तो बड़े वैष्णव, उनका झूठा मैं कैसे खाऊं? एक बार प्लान किए, कैसे प्लान किए बताते हैं। एक दिन क्या हुआ, ओ ज्येष्ठ मास की समय था, ज्येष्ठ महीना में आम फल होता है, होता ना गर्मी के समय होता ना आम, तो आम्र फल, ऐसा आम लाया बिल्कुल सबसे अच्छा आम क्वालिटी का, क्या बोलते हैं किसी आम, कौन सा नाम है, दशहरी
अल्फांसो,
अल्फांसो ये कौन सा नाम है भाई केसरी आम है, दशहरी आम है ना, नहीं ऐसे और भी अच्छे अच्छे नाम है, ये थर्ड क्लास नाम कहां से लाए बताए यही तो हमारा शिक्षा के परिचय है, आम के नाम ही भूल गए, अल्फांसो बोलेंगे, अरे ये क्या है भाई है ना, हापुस ये भी बड़ा उत्पटांग नाम है, उसका असली नाम आप नहीं, उसका असली नाम है रत्नगिरी, हाँ रत्नगिरी आम को हम कु अर्थ कर करके हापुस अल्फांसो बोलते हैं, असली नाम होता है रत्नगिरी आम, लेंगड़ा एक नाम है, लेंगड़ा तो बंगाल में होता है, लेंगड़ा फजली मैगनपली सिंदरी कितने सुंदर सुंदर नाम है सब आपका है, हाँ बगीचा था उनका देखो तो, हाँ खा सकता बड़े बड़े क्वालिटी, तो उन्होंने तो बंगाल के हैं तो शायद लेंगड़ा आम लिए होंगे, मालदा, मालदा से तो बड़े आम के फेमस है, तो उन्होंने ये काला कृष्णदास ने उन्होंने हाई क्वालिटी का आम, वो जैसे बोलते हैं प्रभु जी मालदा से लेंगड़ा आम लाए, बड़े उच्च क्वालिटी जिसका सुगंध आधा किलोमीटर तक फैले, ऐसे ऐसा हाई क्वालिटी का आम लेकर के एक बार खरीद करके दो चार किलो और उसके टोकरी में लेकर के गए कि कहाँ, उस झाड़ू फंगियों के घर में जाकर पहुंचे, वो देखे गुसाई आ रहे हैं, कालिदास गुसाई दास प्रणाम की, बोले वो भी प्रणाम के रखकर, कोई बात नहीं मैं गया था वहां मुझे ये भेंट में मिला, मैं तो बराबर खाता ही रहता हूं, हमेशा फीस्ट में जाता रहता हूं, आप कहीं जाते नहीं तो सोचा आप बड़े भक्त हैं आपको दे दूं, बोला लेकिन अमणिया है ना, हाँ मैं तो भेंट लिया लेकर भोग लगा कर खा लेना अमणिया है, तो बेचारे तो गरीब है झावंगी हुआ कहाँ से आम खरीद खाएगा, इतने अच्छा क्वालिटी का आम कहाँ से खरीद पाएगा, अब गरीब घर है उसका घर में भी आम नहीं है और उसके पैसा भी धन भी इतना नहीं कि आम खरीद के खा पाए, और उनका जो पत्नी उनका बेटे थे वो भी कभी आम अच्छे क्वालिटी खाए ही नहीं थे बेचारे, आप देखे पूरा टोकरी भर के इतने अच्छे क्वालिटी के सुगंधी आम मिला, तो बच्चे और पत्नी तो बोलते अब ले लो ना, लेकिन वो तो भाई भगत है झाड़ू ठाकुर, वो बोले कैसे मैं कैसे स्वीकार कर लूँ, इतने बड़े भक्त मत देते हैं खाली खाली उनसे ले लूँ, मैं उसका कुछ नहीं किया कहीं उनसे भेंट लूँ, बोलते नहीं नहीं ठाकुर साहब गोसाई आप मुझे क्यों देते हैं, मैं तो सबसे पतित हूँ सबसे गिरा हूँ झाड़ू देने वाला हूँ भंगी, आप मुझे क्यों भेंट देते हैं, और कोई भेंट देने वाला आपको कोई ब्राह्मण वैष्णव को भेंट देना चाहिए आपका फायदा होगा, मुझे क्यों देते हैं, नहीं नहीं अब कहाँ ढूंढो बहुत मिलता है बहुत लोगों को देता रहता हूँ, तो हमेशा भंडारा फिस्ट में जाता हूँ आप लीजिए प्लीज, ऐसे बहुत नहुरा करके मेहनत करके उनको, और उनका मन में तो इच्छा तो था खाने का, तो बहुत ऊपर से मना कर रहे थे लेकिन जब बहुत ज्यादा किए राम नियम लगाए, राम नियम समझते ना कसम खाने का, हाँ कसम खा कर ले लो कोई हम मन में प्लीज प्लीज लीजिए उसको, तो मन में तो था कि कई दिन से आम नहीं खाया, इतने हाई क्वालिटी का आम इतने सुगंधी लेकर भोग लगाऊं ठाकुर जी को खाऊं उसका प्रसाद, तो ले ही लिए, ले लिए पूरा झुड़ी आम स्वीकार कर लिए, बोले क्या सौभाग्य आज पूरा टोकरी में भरा आम मिल गया मुझे आज, तो लेकर के तुरंत धो धा करके और अमान्य करके घंटी बजा कर तुलसी पुता लाकर अफरिंग किया। उनका घर में छोटा सा विग्रह था, वो भी भंगी है लेकिन वो भी विग्रह सेवा कर रहे थे अपने घर में। कौन सा विग्रह सेवा करेंगे? नारायण सेवा नहीं कर रहे थे, गौरनीता की सेवा कर रहे थे। हाँ, वो पतित पावन तो हैं, तो उनका विग्रह को लेकर के अफरिंग किए। वो जानते हैं साक्षात ईश्वर वही हैं, तो उनको अफरिंग किए, हम काट के लेकर भोग लगाए। तो वो उनको भेंट दे करके कालिदास महाशय क्या किया मालूम है? चुप करके भेंट दिए सामने गेट की तरफ से, घूम करके पीछे चले गए, जाकर के झाड़ी था बैठे, बताया होगा इसमें बता क्या हो। आम्र फले लयाता ए गेला तार स्थान, आम फल लेकर स्थान में गया। आम्र भेट दिया तारा चरण बंदिला, बहुत हाथ पैर पकड़ करके आम भेट दिया, बोले प्लीज एक्सेप्ट इट, दिया उनको। तारा पत्नी ने तबे नमस्कार किया, उनके पत्नी को भी नमस्कार किया कि आपके बल से स्वीकार के, नहीं तो नहीं ले रहे थे। थैंक यू, आपने बोल के ले लिया, आपने नमस्कार किया। और पत्नी सहित ते हो आछन बसिया, तो देखा कि पत्नी के साथ बैठे। बहुत सम्मान कैला कालिदेसर दिखिया, कालिदास को देखकर पति पत्नी बहुत सम्मान किए। इष्ट गोष्ठी कतक्षण करी तारसने, बोले तुरंत दाम देकर नहीं निकल गए, उनके पास बैठे, पति पत्नी के पास बैठ कर इष्ट गोष्ठी किए। इष्ट गोष्ठी मतलब इष्ट के गोष्ठी, हम लोग कभी कभी इष्ट गोष्ठी करते हैं, सारे दुष्ट गोष्ठी होता है। प्रसाद में ये किचन में ये मिर्ची ज्यादा डालता है, ये तेल ज्यादा डालता है, वो मुझे सप्लाई नहीं दिया, ये इसी के हमारे भक्तों के इष्ट गोष्ठी, सारे दुष्ट गोष्ठी होता है। लेकिन इष्ट गोष्ठी का मतलब इष्ट के बारे में गोष्ठी करना, विचार आलोचना करना। इष्ट मतलब उनके सभी के इष्ट कौन थे? महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु उन्हीं इष्ट थे, उन्हीं के चरित्र के बारे में बोलना ही इष्ट गोष्ठी है। चैतन्य लीला बात किए, महाप्रभु ऐसा किए, ऐसा नाचे, ऐसा गाए, ऐसे किए, उन्हीं के बारे में, उन्हीं के समसामयिक तो थे, उनके बारे में आलोचना की, इष्ट गोष्ठी किए। कुछ समय करने के बाद झाड़ू ठाकुर कहे तारे मधुर वचने, आमे नीचे जाति तुम्हें अतिथि सर्वोत्तम, कोनो प्रकारे करीमे तुम्हारा सेवन। तो इष्ट गोष्ठी बाद झाड़ू ठाकुर बोले, देखो मैं तो नीच जाति हूं, भंगी हूं, आप मेरे अतिथि बनकर आए भेंट देने के लिए, आप तो सर्वोत्तम है, रघुनाथ दास के कुड़ा है, कोनो प्रकार करीमे तुम्हारा सेवन, मैं तो बड़ा गरीब हूं, कैसे आपकी सेवा कैसे करूं, मेरे घर के आसन भी तो आपको नहीं देख सकता हूं, दे सकता हूं, मेरे घर का पानी भी आपको नहीं दे सकता हूं, कैसे सेवा आपको करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आज्ञा देह ब्राह्मण घरे अन्न लया दिवे दिए, तहां तुम्हें प्रसाद पायो तबे आमी जिए। समझिए तरीका मालूम है, कोई भंगी अगर जेंटलमैन होगा, वैष्णव होगा, उनके घर में कोई बड़े वैष्णव अगर चले गए, तो जानता है कि अपना घर का तो कुछ भी स्वीकार नहीं, आसन भी स्वीकार नहीं करेंगे, छुएंगे नहीं, पानी का बर्तन को छुएंगे नहीं बिल्कुल उनके घर का। तो फिर वो जानते हैं झाड़ू ठाकुर के, हमारा घर में तो बड़े हैं, वो नहीं करेंगे, तो क्या कैसे सेवा करूं? बोलते हैं प्लीज ऐसा करो, मैं पैसा दूंगा कुछ ब्राह्मण को, वो ब्राह्मण घर, ब्राह्मण अपना घर में भोजन बनाएगा, चावल भात बनाएगा और आपको खिलाएगा, आपसे स्वीकार करना, अपना घर तो कुछ खाएंगे नहीं, मैं भीख मांग करके थोड़ा एक फंड रेजिंग करके इकट्ठा करके उनको दे दूंगा, उनके घर से तो आप खा सकते ना, बड़े मिश्र ब्राह्मण के घर में दे दूंगा, उनके घर में हम खाएंगे। ऐसे सेवा करने के लिए तरीका सोचते हैं। आज्ञा देह ब्राह्मण घरे अन्य लया दिबो, ब्राह्मण के घर में मैं उनका अर्थ दूंगा, वो चावल खरीद कर भोजन बनाएगा, तहा तुम्हें प्रसाद पाओ तबे आमी जी, अब उनके घर में आप प्रसाद पाएंगे तब मेरा कल्याण होगा। कालिदास कहे ठाकुर कृपा करो मोरे, तुम्हारा दर्शन आई नु मुही पति तपामरे। बोले ये क्यों बेकार ऐसी आलोचना कर रहे हैं, मैं आपका दर्शन पाया, मेरा उद्धार हो गया, बाकी खान पीना बात छोड़ो, मैं ढेर भंडारा खाता रहता हूं, आपका दर्शन पाया मेरा काम बन गया, पवित्र हुई नी मुई पाइनु दर्शन, कृतार्थ हुई नु मेरा सकल जीवन। बोला मैं पवित्र हो गया आपका दर्शन करके, मेरा जीवन कृतार्थ हो गया। एक वंशा है यदि कृपा करी कर, पाद रज देह पाद मोर माथे धर। बाप रे बाप, क्या व्यवहार है। बोलते हैं कि अगर आप मुझे कुछ आतिथ्य सेवा करना चाहते हैं, मुझे बोलूं सो करेंगे ना? बोलिए आप नहीं खाएंगे, बोलते हैं बोलिए क्या करूं फिर। बोलते एक वांछा है मेरा, एक इच्छा है, यदि कृपा करते हैं आप करिए उसको ना, क्या बोलो? पाद रज देह, पाद मोर माथि धर, समझ में क्या बोले? आपके चरण को मेरे सर के ऊपर धर दो और थोड़ा धूल डाल दो चरण की धूली। कौन बोल रहे हैं बात? महाभागवत कालिदास बोल रहे हैं भंगी ठाकुर को। अब कोई है ही नहीं, आप दोनों तो हैं पति पत्नी, अब कोई देखेंगे नहीं, शर्म नहीं लगेगा, आप चरण उठाकर मेरे सर में मार दो किक, थोड़ा धूल गिर जाए, मतलब शख्स पक्ष तो पहनते नहीं हुए, तभी झाड़ फाड़ू करते हैं, धूल तो लगा होगा, थोड़ा धूल चरण रज गिर जाए। अगर आप मेरा सेवा करना चाहते हैं, यही सेवा मुझे दीजिए। हम कभी मांगेंगे? हम तो कभी वैष्णव तो है नहीं, लेकिन फिर भी कभी जाएंगे, ऐसा मांग कभी स्वप्न में आशा कर पाएंगे? तो कहा कि भक्त बनेंगे, हम किस प्रकार बन पाएंगे? पाद रज देह पाद मोर माथे धर, ठाकुर कहे ऐसे बात करी तेना जुआ। झाड़ ठाकुर होते मुंह में हाथी उले रही, ऐसी बात करते आप, मुझे मरवाएंगे क्या आपने? ऐसे क्यों बात करते हैं आपने? ठाकुर कहे ऐसे बात करी तेना जुआ, आमी नीचे जाती तुम्हें सुजन राय। बोले आप सुजन है, जमींदार घर के लोग हैं, आप ऐसी बात क्यों करते हैं? तब ये कालिदास श्लोक पढ़ी सुनाई ल, सुनी झाड़ू ठाकुरे र बड़ा सुख है ल। इस बात को सुनकर के झाड़ू कालिदास ने एक श्लोक पढ़े। क्या श्लोक पढ़े? इतिहास समुचे भगवत वाक्य, ये भगवत वाक्य है। नाम भक्त चतुर्वेदी मद भक्त स्वपच प्रिय तन्मे देयं ततो ग्राह्यं सच पूज्य जथा अहम्। ये श्लोक है, भगवान ने उच्चारण किए थे। क्या श्लोक है? ना नामे भक्त चतुर्वेदी, भगवान क्या कहते हैं? कोई चतुर्वेद की ज्ञाता चतुर्वेदी ब्राह्मण वो मेरा भक्त नहीं है। बोलते नामे भक्त चतुर्वेदी मद भक्त स्वपच प्रिय। स्वपच शब्द जानते हैं क्या होता है? चंडाल, कुत्ता के मांस खाने वाला भी अगर मेरा भक्त है वो मेरा प्रिय है। चतुर्वेद की ज्ञाता चतुर्वेदी ब्राह्मण मेरा प्रिय नहीं है, चंडाल भी मेरा भक्त है तो मेरा प्रिय है। तन्मय देयं ततो ग्राह्यं, जो उनके द्वारा देय है चंडाल जो मुझे देता है उसको मैं ग्रहण करता हूं। ये ब्राह्मण देता उसको मैं ग्रहण नहीं करता हूं, वो जो चंडाल दिया उसको मैं बड़े आदर से ग्रहण करता हूं। वो चतुर्वेदी ब्राह्मण देता है, मैं कि हट तेरे से कौन लेता है, नहीं लेता हूं। तस्मै देयं ततो ग्राह्यं सच मे पूज्य जथा अहम्, वो मेरे जैसा पूज्य होना चाहिए। अहम जैसा मेरा पूजा होता है उस स्वपच को भी ऐसा सम्मान पूजा करना चाहिए। ये भगवत वाक्य है। उसको सुन करके झाड़ू ठाकुर कृतकृत्य हो गए। बोले वाह, मेरे सपोर्ट में भंगी के बड़ाई के रूप में ये पुराण वाक्य आपने बोल दिए, इतने श्लोक। खुश हो गए उन्होंने। सुनी ठाकुर कहे शास्त्र यही सत्य है, से नीच नहे जाते कृष्ण भक्ति कय। तो झाड़ू ठाकुर तो वो भी भक्त थे ना, वो बोलते हैं जो आप श्लोक पढ़े तो बात तो सही है। सुनी ठाकुर कहे शास्त्र यही सत्य है, शास्त्र में तो यही सत्य कहा गया है। जई नीच से नीच नहे जाते कृष्ण भक्ति कय, जो कृष्ण भक्ति आचरण करते हैं वो नीच हो ही नहीं सकता। भले बाहरी दृष्टि से वो भंगी क्यों ना हो, काम कैसा करते हो, लेकिन वो नीच नहीं हो सकता क्योंकि कृष्ण भक्ति कर रहा है। आमी नीच जाति हमारा नहीं कृष्ण भक्ति, अन्य इच्छे है हमारा नहीं इच्छे शक्ति। लेकिन हम तो नीच जाति है, हमारा कृष्ण भक्ति करने के लिए कोई शक्ति भी नहीं है। अन्य इच्छे है हमारा नहीं इच्छे शक्ति, अन्य अन्य जैसे भक्ति करते मेरा ऐसी शक्ति नहीं इस भक्ति करने के लिए। तारे नमस्करी कालिदास विदा मांगिला, तो वैसे ईसा के पर कालिदास कर बहुत हो गया, आप अपने आप को नम्र मानते हैं इसलिए मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। घंट भर बातचीत करके उनको प्रणाम करके फिर उठे जाने के लिए। तारे नमस्करी कालिदास विदा मांगिला, उसे विदा लेकर के उठे। झाड़ू ठाकुर तबे तार अनुब्रजी आईला, अनुब्रजी मतलब उनको विदा देने के लिए बेचारा कुछ नहीं कर पाए। नहीं नहीं अनुब्रजी, ब्रज मतलब चलना, उनके पीछे पीछे थोड़े दूर तक जाना। कोई विशेष ज्ञाति कोई अतिथि अगर आता है जो विदा लेता है उनके साथ में थोड़े दूर उनको विदा देने के लिए जाना, उसको बोलते अनुब्रज करना, उनके पीछे पीछे चल के जाना। तो जब कालिदास ने उठ करके नमस्कार करके चले तो झाड़ू ठाकुर ने उनके पीछे पीछे भी थोड़े दूर तक चले, आधा किलोमीटर तक गए होंगे उनको छोड़ने के लिए, है ना। तो बोलते हैं तारे विदा दिया ठाकुर जदि घरे आयल झट ठाकुर तबे तारे अनुब्रजी आयला। तारे विदा दिया ठाकुर जदि घरे आयल तो उनको बहुत आधा किलोमीटर तो जाकर विदा देकर के झाड़ू ठाकुर जब अपना घर में वापस आए जब घरे आयल तारा चरण चिन्ह सही ठाई पड़िल। तारा चरण चिन्ह सही ठाई पड़िल सही धूली लया कालिदास सर्वांगे लेपिला। समझ में आ रहा है क्या हुआ? जो ओ इतना दूर तक तो उनको छोड़ने के लिए गए थे ना, वो झाड़ू भंगी तो कभी चप्पल तो पहनते नहीं थे, झाड़ू देने वाला चप्पल वो इसे बिना चप्पल में गए थे उनको छोड़ने के लिए। जैसे छोड़ करके वापस आए तो कालिदास यहीं खड़े रहे, वो आगे नहीं बढ़े। जैसे चले गए थोड़ी दूर जहां उनका चरण चिन्ह पड़ा था वहीं से धूल लेकर के लगा, बोले मुझे अब नहीं दिया ना चरण, अब मैं लूंगा। आप जानबूझ करके चरण मेरे मत्थे में नहीं रखे, अब क्या करे, अब तो सत्व आपका नहीं, आप छोड़ के चले गए चरण चिन्ह, अब मैं लूंगा वहां से उठा करके, ये हमारे अधिकार है, अभी आपका अधिकार नहीं, आप छोड़ के गए चरण चिन्ह। तब धूल उठाकर अपने सर में डाले और लोट पट हुए उसमें। सर्वांग लेपिला, केवल सर में नहीं सारे अंग में चरण धूल लाके लगाया। हम तो सेंट पेंट पाउडर लगाते हैं लेकिन ये उसको लगाए, किसका लगा किस क्या लगाए, भंगी के चरण रज पद धूलि को सारे शरीर में लेपन किए। लेपिला तारा निकटे एक स्थाने लुकाइया रहिला। अब क्या किया फिर, सारे अंग में लगाए चरण धूल, तब घूम करके उनके घर के पीछे चले गए, जाके छिप करके झाड़ी के अंदर बैठे, निकट जाकर घर के पास एक झाड़ी था वहां जाके छिप करके बैठे लुकाया रहिला। झाड़ू ठाकुर घरे जाई देखी आम्र फल। झाड़ू ठाकुर अपने घर में आए, आकर एक तो महक रहा था आम के सुगंध, और जाकर जब दर्शन किए आम को ओह और तो टपकने लगा। देखी आम्र फल मानस ही कृष्ण चंद्रे अर्पिला सकल। बोला और अभी तुलसी पत्ता डाल करके काट करके अर्पण को इतना टाइम नहीं, अब इतना टाइम मैं सहन नहीं कर सकता हूं, इतने देर से ही उधर जलता है तो मानसिक अर्पण कर दिए क्विक। कभी कभी हम लोग टाइम होता ना, ये फटाफट करो मेंटल कर दो अफरिंग चलेगा, मार ताली उठा थाली अब अब इतने देर तक जो मंत्र करो गायत्री करो पांच मिनट बंद करो ये सब नाटक नहीं करो, थाली मारा उठा। वो बोले मेंटली अफरिंग करो, इतना सुंदर आम सुबह से खाया नहीं, आप सहन नहीं किया जाएगा अब इतने उपचार करने के लिए तो मेंटली अफरिंग किए। मानस ही कृष्ण चंद्रे और प्रिला सक, सारे भगवान को सारे फल को टोकरी टोकरी दे, कोई निकाला थाली में रखो काटो पिटो कुछ नहीं किया, सीधा सीधा सारे टोकरी सहित अर्पण कर दिया। भंड धूप लगाया कोलार पाटु कोलार पाटुआ खोला होते आम्र निकासिया। कोलार पाटुआ जानते हैं क्या होता है, कोला माने केला, बनाना लीफ, अब तो हिंदी नहीं समझ पाएंगे केला बोलने से, केला के पत्ता, केला बोलते ना हिंदी में, केला के पत्ता, उनके घर में तो थाली फाली था नहीं, कोला बोलते हैं, अब एंगली है क्या, हाँ कोलार पत्ता, वो कोलार पत्ता ला करके डाला कहीं भी उनका प्लेट होता है। गरीब घर केला के पत्ता डाला, सारे आम को निकाल करके और पूरे सपरिवार बैठ गए और खा करके उसमें डाले, क्या डाले बोलते, कलार पाटुआ खोला हैते आम्र निकासिया, तारा पत्नी तारे देना खाए न चुसिया। अब पत्नी निकाल करके उनको देती है और वो चुस चुस कर खाते हैं, पत्नी भी खाती है बेटा भी खाता है, वो खाते सपरिवार बैठ करके चुस चुस कर खाने लगा। वो काटने के लिए टाइम नहीं, चूसना मतलब सीधा आम को ऊपर से थोड़ा, आम का ऐसा कभी खाए आम पके हुए आम का, है ना, बिना काटे उसका ऊपर से थोड़ा छीन लो बस, सीधा डायरेक्ट चूसते चूसते लो, और बाद में फिर उसका अंदर से गुठली निकाल कर पूरा आगे पीछे साइड माइड सब खा लो, फिर जो जो छिलका है उसको निचोड़ करके पूरा रगड़ करके खाओ, जो बिल्कुल ड्रॉप ना रहे फिर जा करके रिजेक्ट करो उसको छोड़ो, है ना। नहीं जब तक तीता रस ना निकले, मीठा रस तो नील कर देंगे, तीता रस नहीं निकला तब तक नहीं छोड़ेंगे उसको, रगड़ कर खा जाएंगे घुटली की और चुस्का को छिलका को, इसे पूरा खाए। बोले चुसिया चुसिया खाई ले उसको, सारा परिवार खाई ले चुसिया, चूसी चूसी चोसा आंटी फलीला पाटुआते, बंगाली भाषा है, उसको चूस चूस करके, जो आंटी मतलब जो उसका
आटी, आटी,
उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? गुठली। गुठली और छिलका, और जो उसको बोलते हैं छिलका, छिलका और उसको पत्तल में रख रहे थे इकट्ठा, क्योंकि पूरा टोकरी खाएंगे ना सारे, आप भोजन तो खाए नहीं तो सारे टोकरी खा गए। आंटी फेलीला पाटू आते, तारे खाऊ वहां तारा पत्नी खाए पश्चाते, तो उनको खिलाने के बाद उनके पत्नी भी खाया पश्चाते, पत्नी का धर्म होता है पति के बाद खाना, तो खाए। आंटी चोसा सही पाटुआ खोलाते भरिया, बाहिरे उचिष्ट गर्ते फैलाइला लैया, सब खा करके पूरे परिवार खा लिए, तो उनके पत्नी ने फिर जो पत्तल उठा करके सारे टोकरी खा लिए, पूरा उनके जो छिलका और गुठली था उसको पत्तल से उठाकर लेकर के पीछे दरवाजे में जाकर के थोड़ा दूर में एक उचिष्ट गर्त था, क्योंकि उनका डस्टबिन तो होता नहीं, घर भी घरता एक गड्ढा था, गड्ढा होता ना सब जिसमें सब डालते हैं सब गंदा चीज, तो गड्ढा में उचिष्ट गर्त में उसको फेंक दिया, कोई है नहीं पीछे जाकर, पीछे दरवाजा खोल करके बाड़ी पट में फेंक दिया उसको। फैलाई ललया सही खोला आंटी चकला चुसे कालिदास, कालिदास तो झाड़ी के अंदर बैठा था, देखा काम बन गया, अब फेंक दिया ना, तब अभी जंगल से निकला चुपचाप, देखा कि उनका पत्नी फेंक करके चला गया, दरवाजा बंद कर दिया, अपने घर में गए, तब निकल कर आया, चारों ओर देखा कोई नहीं, पूरा चुपेका हुआ पत्तल उठाया, सारे जो गुठली और छिलका को ला करके बैठ गया, छिप छिप करके चुसने लगा, सब खाया, चुसीते चुसीते हय प्रेमेते उल्लास, उस झूठन भंगी का झूठन जो छिलका और गुठली था उसको जब चूस रहा था प्रेम में उल्लास हो रहा था, प्रेमेते उल्लास ऐ मते जत वैष्णव वैसे गौड़ देशे कालिदास ऐछे सवार नीला अवश्य से, इस प्रकार प्रकट में हो अपर प्रकट में हो, सामने हो पीछे हो, छिप करके हो बिना छिप करे हो, सारे भक्तों का झूठन तो वो खाया ही, किसी को पता चले या ना चले वो तो खाया। सही कालिदास जबे नीला चल आईला, महाप्रभु तारा ऊपर महाकृपा कैला, वही कालिदास जी पुरी आया है, नीलाचल पुरी आया है, तो महाप्रभु उनको विशेष कृपा कर रहे हैं, क्या कृपा किए, प्रतिदिन प्रभु जदि जान दर्शने जल करंग लया गोविंद जाय प्रभूषणे, महाप्रभु जो पुरी में रहते थे उनका नित्य प्रति का एक रूटीन था, सुबह उठ करके नित्य कर्म के बाद जगन्नाथ जी के मंदिर दर्शन करने के लिए जाते थे, दर्शन करने के महाप्रभु सन्यासी हैं, जब जाते थे तो तभी जमाने में तो इस रोड रास्ता ठीक थी ना, धूला धूसर रोड था, तो आगे आगे भीड़ को इकट्ठा करने के लिए, भीड़ को साइड करने के लिए बड़ी बिल्डर काशी मिश्र जाते थे काशीनाथ, और पीछे पीछे जलपात्र और करंगी लेकर के गोविंद जाते थे, सरभंड दो सरभंड आगे पीछे चलते थे, तो महाप्रभु जाते थे प्रतिदिन, किसी को अपरस सपरस जानते हैं, अपरस सपरस क्या होता है, आप लोग पुजारी पुजारी आप लोग इसकन पुजारी हो कैसे जानेंगे, अपरस सपरस, अपरस होता है जैसे आप कोई देव कार्य कोई शुद्ध कार्य मंगल कार्य करने जाते हैं, स्नान टान करके सही धुला हुआ वस्त्र पहन करके तिलक करके जब जाते हैं तो पुजारी लोग किसी को छूना नहीं चाहिए ना, फिर झूठा हो जाऊंगा, तो उसको बोलते हैं अपरस, तो उसको पूजा करने के बाद आएंगे जो कपड़ा बदलने फिर सपरस होंगे, है ना, अपरस समय कोई नहीं छू सकता, सपरस में कोई छू सकते हैं, तो इसको अपरस अवस्था सपरस अवस्था बोलते हैं, तो महाप्रभु जब जाते हैं दर्शन करने के तो अपरस होकर जाते हैं, कोई इसको छू नहीं सकता, लेकिन भीड़ इतना तो कोई छू देगा, तो इसलिए आगे एक बड़ी गार्ड चलता है काशी मिश्र, वो कोई नहीं पास आ सकता, कोई नहीं छू सकता, और फिर भी धूल फूल लग जाता है, तो इसलिए मंदिर जाने से पहले मंदिर के सामने में वो पानी जलपात्र लग जाते हैं, पैर धोते हैं, पैर धो के मंदिर में प्रवेश करते हैं, मंदिर में जाने का ये विधि है, हम लोग तो आते हैं ऐसे सीधा घुस जाते हैं मंदिर में, बोले नहीं मंदिर जाने से पहले हाथ मुंह धो करके मंदिर में जाना चाहिए, थोड़ा सा पवित्र होकर जाना चाहिए, भगवान परमम पवित्रम, तो इससे पवित्र को थोड़ा पवित्र हमको भी होना चाहिए, हाथ पर धो के शुचि होकर जाना, मुची होकर नहीं, तो इस प्रकार महाप्रभु प्रतिदिन जाते थे, जलपात्र जाता था पानी डाल करके लोटे से पैर धो करके फिर जाते थे, तो ऐसे महाप्रभु का नीति था, कोई अगर महाप्रभु को भीड़ में कोई बाय चांस उनका चरण छू देता था महाप्रभु मना करते थे, लोग रखे थे उनको छूने नहीं देते थे, लेकिन फिर भी कोई भीड़ में छू दिया तो महाप्रभु रूठ जाते थे, उस दिन फास्टिंग करते नहीं खाते थे फिर, तो इसलिए डर के मारे कोई छू नहीं जाता, नहीं छू दूंगा तो खाएंगे नहीं आज प्रभु जी, फास्टिंग करेंगे, तो इसलिए कोई नहीं छूता था। जो पैर छूने में इतने आकट है तो उनका पैर धोआ पानी कोई लेगा, चरना तो कोई ले सकता, सांस करेगा कोई, पास में कोई नहीं जाएंगे, देख देंगे, नहीं बाप रे बाप, हफ्ता भर फास्टिंग कर लेंगे, फिर नहीं जाएंगे कोई। तो प्रतिदिन महाप्रभु जाते थे, चरण धो तो करते थे, पानी के पूरा पोछ कर साफ होता था, फिर आगे जाते थे, कोई इसे नहीं ले सकता उसको। तो उसी दिन जब कालिदास गए थे महाप्रभु डेले, वो भी गए थे, तो भीड़ के साथ में कालिदास भी गए थे, पूरा भीड़ इकट्ठा था, सारे भक्त लोग गए थे, कालिदास भी भीड़ के साथ गया था। कालिदास न एक से पहली बार आए हैं तो कई लोग जानते नहीं कालिदास कहाँ है कौन है, तो भीड़ के साथ गया। तो महाप्रभु गए, भीड़ इकट्ठा सब उठा करके साइड करके काशी मिश्रा के चलते महाप्रभु गए मंदिर में। प्रवेश करते समय गेट में एक पर्टिकुलर प्लेस है जहां महाप्रभु 22 पाच पूरा करने के बाद उन पर धूत करते थे, तो वहीं पैर धोए। जैसे पैर धोई सकड़ों भक्तों का भीड़, सब साइड होकर खड़े हैं, डेली डेली महाप्रभु चरण धोते थे, धोते धोए, तो आज भीड़ के अंदर से एक भक्त निकला, वो था कालिदास। निकल करके जा करके जो पैर धोते थे महाप्रभु, वहीं से पैर बढ़ाए, गोविंद उनका चरण धोता था सर्वहैंड उनका, तो नीचे से हाथ दिखाया, हाथ दिखाकर चरण से लिपट करके, चरण से इस हाथ से पोछ करके ऐसे हाथ पानी लिया, लेकर पिया, अंजुली करके दो हाथ से भर के पिया महाप्रभु के सामने। सारे लोग देखते हैं, बाप रे बाप क्या कर रहा है वो। महाप्रभु उसको डांट रहे नहीं, गाली नहीं देते, ये उनका बड़ी बिल्डर खड़ा है, ये सर्वहैंड खड़ा है, वो भी कुछ नहीं बोलते, वो कुछ आए बोलने के लिए, महाप्रभु चुप डिस्टर्ब मत करो, लेने दो उसको, लेने दो। एक बार लिया पिया सबके सामने, दूसरी बार लेकर पिया आश्चर्य, तीसरी बार भी लेकर के पिया, सबके आश्चर्य की सीमा ही नहीं, क्या हो रहा है आज। तब महाप्रभु बोले, कालिदास वास हो गया, हो ना संतुष्ट, नहीं इतना है, और ज्यादा मत करो, जाओ ठीक। बड़े प्रेम से प्यार से उसको पीठ में हाथ थपड़ करके विदा कर दिए। सारे भक्त सर में हाथ, बोले ये क्या हो गया, हम कभी पैर में हाथ देते तो गुस्सा हो जाते हैं, अरे वो तो फास्टिंग कर लेते हैं, अब पैर धोआ पानी लेंगे तो बात ही क्या है, अरे आज तो ये जाकर के पता नहीं कहां से अनसुना अनजाना एक भक्त आ गया, अरे पैर से हाथ नोच नोच करके भर भर करके अंजलि पी गया तीन बार, और उसको कुछ नहीं बोले, पीठ में हाथ थपड़ कर आशीर्वाद देकर विदा कर दिए। बोले बस बस, जितने सारे भक्तगण थे हजारों संख्या में, सबके आश्चर्य की सीमा ही नहीं रहा। वो दर्शन क्या करे, जगन्नाथ दर्शन प्रसंग सब गायब उनका। बोले अब सब मन में वही विचार चल रहे, क्या क्या रहस्य उसका, व्हाट इज गोइंग ऑन। सारे दर्शन करके जो वापस आए, सारे एक साथ में एक प्रश्नवाची लेकर के बैठे, प्रभु ये रहस्य बताए, ये हुई सी हुई ये कौन है, कहां से आ गया, पहली बार आया ये, इसका ये ताकत, ये महिमा उसका, उनको आपने चरण धो करके पानी सब मंदिर के द्वार पर सामने सबके समक्ष में तीन तीन अंजुला भर के पिला दिए, और फिर आशीर्वाद दिए, कुछ बोले नहीं, गुस्सा नहीं हुए। हु इज ही, ये कौन है। जब ये प्रश्न रखे, उसके उत्तर में महाप्रभु कहे, ये और कोई नहीं है, ओ हे मेरा प्रिय भक्त कालिदास। क्यों आपका इतना प्रिय बना, मैं बता चुका हूं। हरे कृष्ण, श्री कालिदास महाराज की, समवेत गौर भक्त वृंद की जय।
बहुत मीठा
लगा, आम ही मीठा था ना।